नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये।
हरे कृष्णा। तो आप सबका गोवर्धन इको विलेज में स्वागत है। आप पहली बार गोवर्धन इको में आए कि पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं, बहुत बढ़िया। ये इसलिए बनाया है कि आप बार बार आए, क्योंकि ये वास्तविक रूप में आपका स्वगृह है। दिस इज योर होम, क्योंकि ये कृष्ण का घर है। जो कृष्ण का घर है वो भी हमारा और आपका घर है। और बार बार आपके जीवन में श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहे, इसलिए इसको बनाया है। और बार बार आप अपनी स्मृति को पुनर्जागृत करें, रिफ्रेश करें, इसलिए गोवर्धन इको विलेज बनाया है। इसके पीछे श्रील प्रभुपाद जी की दूरदृष्टि है कि लोगों को बहुत कम अंतर में श्री वृंदावन धाम का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो इस आज्ञा को कुछ हद तक पूरा किया गया। कुछ समय तक न्यू वृंदावन बनाना बन गया कुछ समय के लिए, फिर वापस नहीं पूरा हो पाया वो। लेकिन न्यू वृंदावन भी बहुत गौरवशाली जगह है, जहाँ मैं जा चुका हूँ। आप गए प्रभु जी न्यू वृंदावन? न्यू वृंदावन बहुत सुंदर जगह है। फिर हंगेरी में भी शिवराम महाराज ने एक प्रतिकृति वृंदावन बनाया है। फिर राम किली में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने भी वृंदावन बनाया था। यहाँ पर वो राम किली तो पश्चिम बंगाल में, शायद बिहार में पास में, और वहाँ पर श्री वृंदावन के अनुभव प्राप्त करने के लिए जहाँ पर हम नौकरी कर रहे हैं, मतलब सेवा दे रहे हैं, वहाँ पर श्री वृंदावन का निर्माण किया गया था। भगवान को द्वारका में बहुत बार ब्रज की याद आती थी, तो उधर भी उनके शांति के लिए समुद्र किनारे जब उन्हें वृंदावन बनाया गया था टेम्पररी। बहुत सुंदर वर्णन है उसका, बहुत दीर्घ वर्णन है, कैसे कैसे श्री कृष्ण व्याकुल थे वृंदावन से, और उनके मन को बहलाने के लिए द्वारका का समुद्र किनारा जमुना किनारा बना दिया, यशोदा नंद महाराज की प्रतिकृति खड़ी कर दी, गाय भी खड़ी कर दी, ऐसे करके बहुत देर तक श्री कृष्ण भाव में थे। उसको समझ में नहीं आया, फिर पता चला कि द्वारका ही है। लेकिन उन्हें धन्यवाद दिया इस बात का कि आपने कुछ समय क्यों नहीं हमें वृंदावन का आभास दिया। वृंदावन नहीं सही, लेकिन वृंदावन का आभास भी कुछ कम नहीं। तो लोग कहते हैं कि ये वृंदावन जैसे बनाया गया है, लेकिन थोड़ा मैं असहमत हूँ इसके लिए। आई एम नॉट एग्रीबल टू दिस। मेरा ऐसा अनुभव है कि वृंदावन से अभिन्न है, दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। क्योंकि जो वृंदावन में जा चुके हैं कई बार, आप में सब में वृंदावन गए हैं आप लोग? कितने लोग वृंदावन गए? बहुत लोग गए, बहुत बाकी भी हैं। आपका काम है उनको ले जाने का। तो जो वृंदावन गए हैं, तो वृंदावन जाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप जाओ, रूम बुक करो, अच्छा प्रसाद बुकिंग करो, ट्रैवलिंग अच्छा बुकिंग करो, थोड़ा स्थान का अच्छा बुकिंग करो, अच्छी कथा वाला बुकिंग करो। और दूसरा है अंतरात्मा के साथ वृंदावन जाना। ये सब कुछ जरूरी है, ये करना भी है, लेकिन श्री वृंदावन का स्पर्श हमारे आत्मा को होना चाहिए। वृंदावन की अनुभूति वो गहराई में होनी चाहिए कि ये सब भोजन, ट्रांसपोर्ट, रूम, ये सबके परे कोई एक वृंदावन है जो आपको हृदय को छूना है। तो वैसे अनुभूति जिसको प्राप्त हुई है, उनको यहाँ पर आकर भी वही अनुभूति प्राप्त होती, सेम टू सेम। तब अंदर से पता चलता है कि ये अभिन्न है, इट इज़ नॉट डिफरेंट। भले संक्षिप्त रूप में हो, वन थर्ड हो, जो भी कुछ हो, तकनीकी दृष्टि से वो आर्टिफिशियली जमुना बनाई हो, लेकिन असली वृंदावन कहाँ पर है? भाव में है। असली वास्तविक वृंदावन जो है वो भाव में उपस्थित होता है। वहाँ पर भी वास्तविक वृंदावन हृदय में होता है, नहीं तो हृदय में नहीं रहेगा तो क्या देखेगा? अरे सुअर, अरे बंदर, अरे कीचड़, अरे ये ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं, रास्ता खराब, ये सब वही दिखेगा आपको। वहाँ पर भी अगर वृंदावन की अनुभूति करने तो भाव की आवश्यकता होती है, वो भी मैचिंग भाव होना चाहिए ना, वो फ्रिक्वेंसी मैच होना चाहिए। वहाँ पर लेक्चर चलता है, लेक्चर हिंदी का 96, इंग्लिश का 90, तो 85 लगाया तो कुछ भी सुनाना नहीं पड़ेगा। उधर भी लेक्चर चल रहा है, लेकिन जब तक 90 में मैचिंग नहीं होता है तब तक सुनाना नहीं पड़ेगा आपको। तो जब वहाँ पर मैचिंग करना ज़रूरी है, तो और कहीं मैचिंग के बिना कैसे अनुभूति होगी? तो वास्तविक वृंदावन जो है, वास्तविक वृंदावन जो है वो हृदय में ही उसकी अनुभूति होती है। कई मार्ग हैं, श्रुति मार्ग से, नेत्र मार्ग से, प्रसाद सेवन के मार्ग से, निवास मार्ग से। निवास भी वहाँ पर एक बहुत पावरफुल चीज़ है। निवास करने से भी अश्वमेध करने, यज्ञ करने का लाभ होता है। सोने से, योग निद्रा करने का लाभ होता है। और केवल चलने से यहाँ वहाँ, भले सिंगाड़ा खाने को भी जाएंगे ना तो भी अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ होता है। कोई चाट खाने जा रहा है, कोई टिक्की खाने जा रहा है, कोई माखी बारी की लस्सी पीने जा रहे हैं, उसके लिए भी ऐसा ही है, रूल इज रूल। लेकिन फिर भी उसके परे एक वृंदावन की अनुभूति होती है, वो बहुत आवश्यक है। आप लोग इतनी दूर से मेहनत करके आए हो, इतना प्लानिंग, इतना लोगों को इकट्ठा, खाना पीना, रहना, रूम बुकिंग, कार्तिक में वो भी वीकेंड में, तो इतना सब सफलता से आप यहाँ पहुँच गए, है ना? तो इसकी सफलता का प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? प्रूफ, अगर यहाँ पर आके आपको वास्तविक वृंदावन की अनुभूति हृदय के गहराई में हुई, तो फिर सारा प्लानिंग सफल है। जो प्लानिंग अपने सर पे रह जाएगा, आप अपने सर पे रह जाओगे। इसलिए कृष्ण भक्ति में जो भी हम करते हैं ना, वो दिल से करना चाहिए। डोंट जस्ट डू इट बिकॉज वी हैव टू डू, सब लोग कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ साथ में, मैंने भी बुकिंग कर लिया है। इससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर व्यक्ति की तरफ से अपनी अपनी आहुति अर्पण होनी चाहिए, तब जाकर वो सफल होता है। क्योंकि अल्टीमेटली व्यवस्था तो सबके लिए एक ही की गई ना, प्रभु जी ने सबको प्लानिंग करके लाया यहाँ पर, लेकिन हर एक ने अपना अपना पात्र लाया ना, कितना बड़ा लाया उतना ही उसमें भरेगा। कितना पात्र लाया लेकिन भरा ही नहीं तो भरेगा नहीं, भरना भी पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि वास्तविक दृष्टि से, वैयक्तिक दृष्टि से ही आपको करना पड़ेगा सब कुछ, इंडिविजुअली करना पड़ेगा। बाकी लोग क्या करेंगे, अपने अपने हाथ में उनके। आपका अपना पात्र है, आपको अपने को भरना है और खुद मेहनत करनी है उसके लिए, और खुद ही वो भाव बनाना है आपको, तब जाकर ये बनाने वालों का भी उद्देश्य सफल हो जाएगा, आपको यहाँ लाने वालों का भी उद्देश्य सफल हो जाएगा, और आपका भी आने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। भगवान ऐसे ही कृपा तो करते रहते हैं, भगवान अनंत कृपा करते हैं सब पर। जब भी इंद्रदेव वर्षा करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई काला है, गोरा है, प्राणी है, मनुष्य है, सर्प है, कीटक है, सब पर इक्वल वर्षा करते हैं। कुछ लोग छतरी लेकर चलते हैं, कुछ लोग छत के नीचे जाते हैं, और कुछ लोग चलते रहते हैं चलते रहते हैं वो भीग जाते हैं, बाकी सब लोग सूखे रहते हैं, है ना। तो ये सब इतना मैं इतने बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी एक ही दिन के लिए आप आए ना, वन नाइट ओनली, मतलब योग निद्रा का लाभ लेने के लिए एक ही रात है आपके पास तो एक ही रात है, दो ही मील्स है, उसमें एक ही लंच है, मे बी दो ही लंच है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उसमें भी या तो कोई 10 दिन के लिए आए होंगे, कोई 25 दिन के लिए आए होंगे, कोई महीना भर के लिए आए होंगे, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पैकेजेस हैं। लेकिन सब लोगों को और सब लोगों का उद्देश्य और लक्ष्य एक ही है, वृंदावन की हृदय से अनुभूति को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ दिन पहले जब आप यहाँ नहीं थे, मैंने एक एक प्रवचन में कहा था कि वृंदावन की अनुभूति आपको अगर हर क्षण होनी है तो उसके लिए वृंदावन में भी होने की जरूरत नहीं है, है ना। किसी प्रिय व्यक्ति की याद अगर आपको है तो याद बंबई में ही आएगी या विशालनगर में ही आएगी या दिल्ली में आएगी, ऐसा है क्या? वो तो किधर भी आएगी, गटर के बाजू में खड़े रहेंगे तो भी प्रिय व्यक्ति की याद आएगी आपको, क्योंकि वो प्रिय व्यक्ति की याद है ना, प्रिय व्यक्ति की स्मृति है, यही उसके लिए पर्याप्त है। तो गुरु महाराज ने हमको जब भी 1986 में, हमारे माधवानंद प्रभु भी थे उस यात्रा में, है ना, 1986 दिसंबर जब हम पहली बार वृंदावन यात्रा में गए थे तो केवल 22 लोग थे और हम भी आज के आधी उम्र में थे आधे से भी कम, आई थिंक लेस देन हाफ, 22 ईयर ओल्ड ओनली। तो राधानाथ महाराज ने हमको स्टेशन पर स्वागत करने आए थे, वो अभी वो सपनों में भी नहीं आ सकते ऐसे आप सपना देखो तो भी सपने में भी नहीं आएंगे, वो इतने बिजी है अभी वो। लेकिन उस समय हमें रिसीव करने के लिए स्टेशन पर आए थे, हम लोग भी वो थर्ड क्लास अनरिजर्व्ड फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस से आए थे जिस ट्रेन के अंदर दो पैर के पीछे भी यात्री बैठता है एक लेकिन हमको रिसीव करने आए थे और हमको उधर ना, अभी तो मथुरा स्टेशन बहुत अच्छा हो गया, वो टाइल वाइल लगा दिया, फर्स्ट क्लास तो चमकदार हो गया है, उस समय तो ऐसे सीमेंट का कोबा था गंदा, उधर ही बिठा दिया महाराज ने हमको और एक सुंदर प्रवचन दे दिया, वेलकम टू वृंदावन धाम, बहुत सुंदर, बहुत सारी बातें बताई बहुत उत्कट तरीके से, क्योंकि महाराज जी बहुत वृंदावन के रसिक भक्त हैं, वृंदावन ने उनके घर में उनके हृदय में ऐसा ऐसा घर बना लिया था 6 महीने के अंदर, सब कुछ जो था ना, हिमालय, काशी, ये ऋषिकेश, हरिद्वार, सब डिलीट हो गया उधर से, मतलब है लेकिन सब स्थान व्याप्त कर लिया वृंदावन चेतना से, इतना वृंदावन ने उनके ओवरवेलमिंग, हाँ, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद वृंदावन कॉन्शियसनेस, नॉट बाय द एक्सटर्नल्स। तो बहुत सुंदर प्रवचन दिया हृदय से, अभी जब भी महाराज जी बोलते हैं तो एकदम हृदय से ही बोलते हैं, कभी ऐसा पिट पैट पढ़ के ऐसा कभी बोलते नहीं है, कुछ नोट बनाते हैं लेकिन बोलते तो हृदय के कोने से, और लोगों को भी सुनने के बाद में ऐसा हृदय में ऐसा ना हृदय मना मुझे गलबल था ऐसा ऐसा हृदय हिल जाता है उनका, सीधे हृदय में कुछ पला जाता है। तो वो केवल इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं उनके उनके वाणी से। तो उन्होंने ऐसे सुंदर प्रवचन दिया, उसमें ना जो एक बात उन्होंने कही थी वो बहुत आपके लिए, हमारे सबके लिए, अभी भी शाश्वत काल के लिए ज़रूरी है, वो टिल सन एंड मून इज देयर इट इज एप्लीकेबल, कि वृंदावन में जब संकल्प करते ना जाना है वृंदावन में, तब से हृदय की शुद्धि शुरू होती है। अभी तो जाना बाकी है, बहुत दूर है भाई, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, रूम बुकिंग चल रहा है, विचार चल रहा है कौन से दिन जाना है, कितने लोग आएंगे, तब से लेकर जब से चिंतन हो रहा है तब से वृंदावन का परिणाम हमारे ऊपर होने लगता है। लेकिन जिस समय हम वृंदावन में पहुँच जाते हैं, या तो मथुरा स्टेशन पहुँच जाते हैं या तो रोड से उधर टर्न मारते हैं वृंदावन की तरफ, तब से लेकर हृदय के अंदर के कोने में श्रीमती राधा रानी की कृपा याचना करती रहनी चाहिए, उसी व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से वृंदावन में वास प्राप्त होता है। और ये नियम यहाँ पर भी लागू है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, हरे कृष्णा तो हमारी प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत, साथ साथ में राधा रानी को प्रार्थना करते करते हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, तब आपको यहाँ पर भी वही गहराई में प्रवेश मिलेगा वृंदावन में, क्योंकि राधा रानी ही किसी व्यक्ति को भाव रूप में वृंदावन में प्रवेश दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। श्री कृष्ण भी दे सकते हैं लेकिन श्री कृष्ण देते नहीं है प्रॉब्लम है क्योंकि श्री कृष्ण कैसे है ना, सर्वधर्मम परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज, वो भी कैसा है ऑल और नन फिनोमिनन है। वहाँ पर हमारे मेडिकल में होता है ऑल और नन फिनोमिनन है, तो 100% तो ही एंट्री, नहीं तो 99.99 को भी नो एंट्री। दिस इज कृष्णा। इसलिए कृष्ण के साथ, कृष्ण के कभी कभी ऐसा मृदवासी लोग हास परियास में कह देते हैं, अरे उसके चरणों में मत्था टेकेंगे मत्था फूट जाएगा, लेकिन वो सुनेंगे नहीं आपकी क्योंकि बहुत श्रूड लवर है वो। लेकिन राधा रानी बहुत दयालु है। राधा रानी थोड़ा सा भी आपके मन में प्रामाणिकता होगी ना, थोड़ी सी भी, तो तुरंत आपको स्वीकार कर लेती। ललिता को बताती है कि जो भी कोई होगा सिंसियर प्रामाणिक इच्छा वाला, लेके आओ उनको सबको, आपके पास रखो, अच्छी तरह से तैयार करो, हमारे पास भेजो, फिर हम कृष्ण को उनको अर्पण कर देंगे। वो कभी दोष ज़्यादा देखती नहीं, वो केवल वो स्पार्क देखती है, वो चिंगारी देखती है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, होती है, है कृष्ण के लिए प्रेम, सेवा करने की इच्छा, वैष्णवों के प्रति प्रेम आदर भाव, ये थोड़ा थोड़ा भी होगा तो भी राधा रानी तुरंत स्वीकार कर लेती है। इसलिए अभी आपको पता है कि वो फ़ोन आउट ऑफ रेंज है, समझो तो कितनी बार फ़ोन लगाएंगे तो भी आउट ऑफ रेंज आएगा ना, संपर्क क्षेत्र के बाहर है। कुछ समय के बाद संपर्क करो, कुछ देर के बाद आप डायल कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर हमेशा लगता है वो तुरंत करेंगे ना आप उसको, वो राधा रानी का नंबर है। राधे किशोरी दया करो, ये हमेशा मन में हमको बैकग्राउंड में चलना चाहिए, राधे किशोरी दया करो, हमसे बढ़कर दीन न कोई, इस हमसे बढ़कर दुनिया में दीन और कोई नहीं है, इसलिए आप कृपा बरसते रहो। कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे हम कब कब हम पर कृपा कटाक्ष डालोगे आप, कब आपकी कृपा भरी नज़र हमारे ऊपर पड़ेगी, क्योंकि जीव का कल्याण केवल उसी में है। जब तक वो कृपा भरी नज़र नहीं पड़ती हमारे ऊपर, हमको नोट नहीं किया जाता है, हाँ जब तक, तब तक हमारे लिए कोई आशा नहीं है कि हम बचेंगे, सुधरेंगे, या हमारा कल्याण होगा, या हमारा उद्धार होगा, ये नहीं हो सकता है। इसलिए प्रार्थना भी सही जगह सही भाव से करनी चाहिए, सही लोगों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का साथ भी हमारी प्रार्थना को बहुत क्या कहते हैं ऑगमेंट करता है, बढ़ाता है उसको, वृद्धि करता है उसकी। तो सही लोगों के साथ सही जगह और सही भाव से प्रार्थना करेंगे तो तुरंत उत्तर मिल जाता है उसका। तो ये भी वैसे तुरंत उत्तर मिलने वाला स्थान है, गोवर्धन इको विलेज है ना, जहाँ पर भगवान बहुत ज़्यादा लोकल कॉल में है, कभी भी पुकार सके आप सुन सकते हैं उनको, ऐसा है। तो एनीवे हम पिछले बहुत दिनों से वृंदावन धाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और कल के दिन में हमने मतलब वृंदावन धाम की बहुत सारी विशेषताएं थोड़ा आपके लिए रिवाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कई घंटों की चर्चा हुई है, लेकिन संक्षेप में वृंदावन धाम में वृंदावन भूमि महत्वपूर्ण है, रज का कर्ण जो है वो महत्वपूर्ण है, यमुना जी का अस्तित्व जो है वो बहुत ही अविभाज्य अंग है और बहुत महत्वपूर्ण है, गोवर्धन का अस्तित्व भी बहुत ही ज़्यादा उत्कट लीलाओं का स्थान है, फिर ब्रजरज बताया मैंने, ब्रजरज हाँ भूमि हो गई, फिर ब्रजरज हो गया, यमुना हो गई, गोवर्धन हो गया, और गाय, गाय बहुत इम्पोर्टेंट है ना, गाय का नाम ही तो गोकुल और गोलोक वृंदावन को गाय का ही नाम दिया है, और शिवजी बहुत इम्पोर्टेंट है, वृंदा देवी बहुत इम्पोर्टेंट है, और कौन इम्पोर्टेंट है, मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोर और मोर पंख, हाँ बंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अविभाज्य अंग है वो, राम जी के लीला में उन्होंने इतना सहायता किया, राम का इतनी सहायता की कि प्रभु ने कहा कि अगले जन्म में आप आओ थोड़ा सा मक्खन खिलाएंगे आपको, आ जाओ। अभी आज वो मक्खन की स्थिति नहीं रही तो फिर चश्मा ले लेते, वो रोटी भी ले लेते हैं, फिर केला भी, कभी केला तो जमाना पूरा हो गया, अभी वो ऑर्गेनिक नहीं रहे, अभी वो बाकी सब उनको फ्रूटी और मोबाइल वो सब चाहिए आजकल, लेकिन वो सब ओके। अभी बंदर की बात निकली हुई तो बता देता हूँ आपको, संतों का संग कितना इम्पोर्टेंट होता है, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में भी आपको बहुत गहरा सत्य और अनुभूति बता जाते हैं। तो आप अभी वृंदावन जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या बंदर बंदर संभाल के रहो, ऐसा रहो ऐसा रहो, हम गए थे इधर काटा उधर काटा, पर्स ले गया उधर छीन लिया, नोट फाड़ दिया, ऐसी लीलाएं सुनने को मिलेगी आपको। आप कृष्ण कथा भूल जाएंगे, इतनी बंदर की कथा है वहां पर। वो शुरू करने की बस देरी है, बस चालू हो जाते हैं, अरे मेरे बारे में ऐसा हुआ, मेरे बारे में, अरे जब मैं गया था तब ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो आमतौर पर ऐसी बातें चलती रहती है बंदरों के खिलाफ आमतौर पर, कि भाई क्या आतंक है बंदरों का। कहते एक बार 50,000 बंदर को पकड़ के गवर्नमेंट ने पलवल गांव में छोड़ दिया। पलवल गांव किधर है पता है आपको? कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है मथुरा से दिल्ली के रास्ते पे। उधर भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया था। प्रलंबासुर वधस्थल इज इक्वल टू पलवल, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन। तो वहां पर छोड़ के आए थे, क्या कहें आपको, सारे बंदर 6 महीने के बाद लौट के आए पैदल। बोलो इसका मतलब क्या होता है कि आप कुछ चीजों को वृंदावन से अलग नहीं कर सकते, चाहे जितना आप टेक्नोलॉजी, आपका दिमाग, या आप उसको क्या स्टेरिलाइज करेंगे या उनका, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो भगवान की इच्छा है वही होती है। हाँ तो ठीक है, तो मैंने ऐसे ही ना, मैं महाराज को मिला, तो मैंने महाराज को, तो महाराज बंदरों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत, खास करके लोही बाजार के जो दुकानदार है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो लोग वहाँ से दुकान में बैठ के कुछ कुछ खरीदते हैं बढ़िया बढ़िया माल, बाहर आते ही बंदर फाड़ देते हैं उसको पूरा कंप्लीट। तो मैंने ऐसे ही बताना शुरू किया महाराज को, महाराज गंभीर हो गया एकदम, क्योंकि ना वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, क्या उनके मन में विचार है किस बारे में किस विषय में हमको समझ में नहीं आता है। तो गंभीर हो गए, उन्होंने कहा बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन पूरा जंगल था, पेड़ों से भरा हुआ था, फल फूलों से भरा हुआ था, जमुना नदी के जल से भरा हुआ था। आपने पढ़ा ना भागवत में, वो गोपियां क्या महामार्ग से वृंदावन गई थी क्या भाग के रात को? वो तो जंगल में से गई थी, जहां पर शेर हाथी सिंह वगैरह भयंकर जानवर रहा करते थे, बीच रात में, वो भी खूंखार घन्नाटा घना घनघोर अंधेरा था उसके अंदर। वो तो कृष्ण के बारे में बोल रहा हूँ, 5,500 साल के पहले। अभी प्रभुपाद ने जब भी वो जगह लिया ना आपका, हमारे मंदिर का इस्कॉन का रमन रीति में, उस समय वहां पर शेर हुआ करते थे। सब लोग बोलते थे प्रभुपाद जी को, अरे क्यों लिया आपने जगह यहाँ पर, तो शेर वेर रहते, तो इंसान कौन जाएगा दर्शन करने के लिए। और एक बात बता दूं, कितना सघन जंगल था। हमारे वृंदावन मंदिर से एक रास्ता निकलता है छटिकरा, 6 किलोमीटर का रास्ता अभी बना है, अच्छा बना है। उसके आगे 28 किलोमीटर राधा कुंड है, यहां से लेकर वो 34 किलोमीटर का रास्ता था ना, वहां पर सूरज की एक भी किरण जमीन पर नहीं गिरती थी, इतनी सघन वृक्षावली थी। ये सत्य है, तो उस समय जंगल ही होगा ना, और अभी भी जंगल ही था बहुत दिन पहले। तो बंदर लोग आराम से जंगल में रहते हैं। आप अभी चित्रकूट जाइए, वहां पर भी बहुत बंदर है, कभी अटैक नहीं करते आपके ऊपर। अरे उनके लिए इतनी जगह है, क्यों आपके पास आएंगे आपका पर ढूंढे ढूंढे। लेकिन वृंदावन में आज बंसीवट जहां पर है, जो घनघोर जंगल में था, उसके पास और पूरे वृंदावन में इतने आश्रम और इतने बिल्डिंग और इतने गाड़ी और इतने लोग, इतने ये सब हो गया है कि वृंदावन में बंदरों की जितनी भी अपने अधिकार की भूमि थी वो सब इंसान ने नाप लिया। तो उसका बदला तो चुकाना ही पड़ेगा ना, है ना। फिर जो उनके पेड़ आपने छीन लिए, वहाँ बिल्डिंग बनाई, दुकान खोल दी कपड़ों की, इसकी उसकी, और लाखों में करोड़ों में व्यवहार कर रहे हैं, तो ऊपर ही बैठते वो। हाँ कभी कभी हवाई हमला करते वो, होता ना वो भूथल और आकाशतल और नेवी, वैसे वो ऐसे ऊपर बैठे, आपको दिखाई नहीं पड़ता, आप जा रहे हैं आराम से रिक्शा में बैठ के, जा रहे हैं अचानक वो दिखना बंद हो जाता है, अरे क्या हो गया दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना चश्मा गायब है। इधर बैठ के कभी चश्मा निकाला, मैं ऐसे एक बार नूपुर स्थली में, जहाँ पर श्यामानंद पंडित को नूपुर मिला था ना राधा रानी का, वो नूपुर की स्थली का मैं बहुत प्रेम से दर्शन कर रहा था, बहुत प्रेम से, भाव है ना, भाव की बात है ना सब, अचानक दिखना ही बंद हो गया। मेरा नंबर ज़्यादा है जरा, चश्मे के बिना इतना अच्छा दिखता नहीं। तो पता चला कि कंधे पर कभी बैठा, वो मराठी में कहते ना अलगद, इतना हल्के में बैठा और निकाल के मेरे आंखों के सामने एक बिल्डिंग के ऊपर लेके गया हूँ। और मैं देखता रहेगा, अभी नुपुर देखो कि बंद चश्मा देखो। लेकिन कोई ब्रजवासी आया, उसने अपना ट्रिक किया और चश्मा वापस आया। उस बीच में उसने कुछ तोड़फोड़ किया इधर पीछे, फिर तुरंत लोई बाजार में उसका मैंने ठीक कर दिया उसको। लेकिन वो चश्मा अभी भी मेरे पास रखा है मैंने, बदरों की याद में। एनीवेज, तो कल मैंने बंसी के विषय में थोड़ी 2-2.5 घंटे चर्चा की थी, लेकिन मुझे बाद में लगा कि अरे पूरा नहीं हुआ वो, सोचा आगे का आपका बता देता हूँ, है ना। तो कुछ रिकैप कल का ऐसा है कि भगवान की 3 प्रकार की फ्लूट होती है। फ्लूट क्यों कहा, क्योंकि उसके 3 नाम है हिंदी में, फ्लूट एक ही नाम है इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट रिच लैंग्वेज, हिंदी मराठी संस्कृत सबसे रिचेस्ट लैंग्वेज है। तो हम लोग जिसको फ्लूट कहते हैं तो कैसे है, काले अक्षर भैंस बराबर, वैसे फ्लूट है। लेकिन वास्तविक में 3 प्रकार के फ्लूट्स हैं। एक है वेणु, जो 6 इंच की होती है, सबसे छोटी होती है, जो भगवान ने बीच रात में वो शरद पूर्णिमा के दिन बजाई थी, वो वेणु थी छोटी, उसके अंदर 6 होल होते हैं, छेद। फिर दूसरी होती है बंसी, बंसी बंसी जो है वो 15 इंच की होती है, उसके अंदर 9 होल होते हैं, उसमें से स्वर निकलते हैं। और सबसे बड़ी होती है 18 इंच की, उसको कहते हैं क्या बचा अभी, मुरली, बंसी बांसुरी एक ही है, और मुरली 18 इंच की होती है, और उसमें सबसे लास्ट में केवल 4 होल होते हैं, बड़ी होती है ना, उसके एंड में 4 होते हैं, तो ऐसे बजाते होंगे ऐसे। और आम तौर पर मुरली केवल बांस की होती है, बैम्बू की बनी होती है, लेकिन वो मार्बल की भी बनी होती है और गोल्ड की भी बनी होती है। भगवान जब चाहे तभी बजाते हैं उसको अपनी मर्जी से। तो ऐसे ये मुरली जो है उसकी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, 8 प्रकार के स्वर भगवान निकालते हैं उससे। तो हर एक स्वर का अपना अपना परिणाम होता है सृष्टि पर। 5वें स्वर से गोपियों को बुलाते हैं, 6ठे स्वर से 6 ऋतु आ जाते हैं और पत्थर पिघल जाते हैं, 8वें स्वर से केवल राधा रानी को पुकारते हैं, 4थे स्वर से केवल गाय को, लेट मी चेक, हाँ 4थे स्वर से, 4था स्वर का क्या परिणाम है, 4था स्वर वो बजाएंगे ना तो हर एक गाय को अपना नाम सुनाई पड़ेगा उसमें, और लगेगा कि मुझी को बुला रहे हैं खाली, बस ओनली ही इज कॉलिंग मी ऐसा लगेगा। लेकिन हर गाय को वो आवाज़ अपनी सुनाई पड़ेगी अपने अपने नाम से, जहाँ कहीं भी हो। ऐसा नहीं कि गौचारण के क्षेत्र में होना चाहिए, घर पे बंदी होगी उस दिन नहीं आया होगी तो भी सुनाई पड़ेगा उसको, बंदी हुई गाय को गोठे में गौशाला में, ऐसी वो चमत्कारिक बंसी है भगवान की। तो रूप गोस्वामी, सॉरी पहले हम लोग अभी भागवत में क्या लिखा उसके बारे में बताएंगे। भागवत में वो जो वेणु गीत है ना, वेणु गीत वो 10वें अध्याय में 10वें स्कंद में 35वां अध्याय जो है उसके बाद में आता है। ये तो वेणु का गुणगान हो रहा है, जब कृष्ण भगवान वो वेणु अपने बिंब जैसे अधरों को लगाते हैं, तो उसके बाद अपने हृदय का जो प्रेम रस है वो छिद्रों में से उस वेणु में पूरा भर देते हैं, और जब उसको बजाने लगते हैं तो उसमें जो स्वर बाहर निकलता है उससे ब्रह्मा शिव इंद्र आदि सारे देवता पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं, फुल्ली कन्फ्यूज्ड। भले वो बहुत ज़्यादा विद्या विभूषित हैं, पंडित हैं, शास्त्र में परंगत है, वो इस संगीत का मूल स्वर और राग ढूंढ नहीं सकते। इंग्लिश में बताऊं, इवन दो लर्नेड दे कैनॉट फिगर आउट द एसेंस ऑफ दैट म्यूजिक, तो क्या करते हैं फिर, दे बाउ डाउन टू दैट म्यूजिक। अभी ये स्थिति किसकी है पता है आपको, महादेव की बात हो रही है, महादेव और महादेव के पिताजी ब्रह्मा जी और देवों के राजा इंद्र की बात हो रही है, और इनको ना जन्म से ही संगीत का ज्ञान है। जैसे हमेशा बताता हूँ मैं कि बंदर कैसे जन्म से ही ओलंपिक चैंपियन जिम्नास्टिक होता है, वो उसको कोई ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ती है, उसका शरीर ही ऐसा है, बचपन से ही उस चालू होता है एथलेटिक्स। तो वैसे ये कुछ देवताएं हैं जो जन्म से ही, कुछ गवैया हैं, कुछ नृत्य वाले हैं, कुछ बजाने वाले हैं, कुछ विद्याधर श्लोक बोलने वाले हैं, ये सब बाय हार्ट बचपन से ही, उसमें फिर बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है। तो वो तो सब खड़े ही हैं। ऐसे कई बार देखा गया है कि वृंदावन में जब कोई म्यूजिकल कंसर्ट होता है ना, जब कोई संगीतमय लीला होती है, समझो अधिकतर संगीतमय लीला ही होती है वृंदावन में, कैसा हर कदम नृत्य है, हर वचन गीत है, तो बोलते भी गीतों में है और चलते भी गीत में है और नृत्य ही करते रहते हैं हमेशा। लेकिन वो नृत्य की और सॉरी म्यूजिक की संगीत की शुरुआत किससे होती है? सबसे पहले उसकी शुरुआत वेणु से होती है, मुरली वादन से होती है, उससे वो सिम्फनी शुरू होती है। उसके बाद सेकेंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? गोपियों के कंगन। फिर अपने कंगन से वो उसका वो साथ देना शुरू कर देते हैं, और जब कंगन से साथ देना शुरू होता है तो फिर वो अपने पायल को चुम 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 बजाना जमीन पर लगाकर एक दूसरे को लगाकर शुरू होता है। इन तीनों से ये म्यूजिकल कंसर्ट आरंभ होता है। और ये जो म्यूजिकल कंसर्ट है, संगीत सभा जिसको कह सकते हैं, ये शुरू होते ही देवता लोग आकाश में इकट्ठा हो जाते हैं, खास करके बजाने वाले, गाने वाले, नाचने वाले जो प्रमुख देवता हैं ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। और क्या करते हैं, उनको भी अपना लगता है ना कि मैं भी भाई बजाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं भी गाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं भी नाचने में एक्सपर्ट हूँ। किन्नर लोग गाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, गंधर्व गाने में एक्सपर्ट है, किन्नर लोग क्या कहा मैंने, नाचने में एक्सपर्ट है, गंधर्व लोग गाने में एक्सपर्ट है, विद्याधर पठन करने में, रिसाइट करने में एक्सपर्ट है। तो इस प्रकार से सभी लोग आकाश में इकट्ठा होते हैं, और समझो कोई आपके बीच में कोई तबला वाला है या कोई वायलिन वाला है, तो क्या करता है, जहाँ जाएगा वो लेके जाता है साथ में, पता नहीं कब मौका मिलेगा बजाने का, तो तुरंत चालू हो जाते हैं। दे ऑलवेज रेडी टू सिंग, रेडी टू प्ले, जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो वैसे वो सब अपने जब जाते, जब अपने सब साहित्य लेके ही जाते वो। और जब ये तीन विशिष्ट प्रकार के संगीत ध्वनि सुनने लगते हैं तो वो उसको अपना स्वर जोड़ने का प्रयास करते हैं। समझ, मैंने अभी जय राधा माधव गाना शो किया, तो वो जो बजाने वाला है ना, वो पहला टी 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 सा किधर है ढूंढते रहते हैं। वो देखा आपने, द म्यूजिक स्टूडेंट विल ऑलवेज फर्स्ट लोकेट द सा, इनका सा किधर है, फिर उसके बाद में जय राधा माधव सा गाएगा। तो ये उसका मूल राग और मूल स्वर कौन सा है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट अलास, जब ये लीला शुरू होती है, बीच में आती है और बहुत देर चलती है और उसका अंत हो जाता है, उनको उसका सा ही नहीं मिलता है। कितने बार उसका प्रमाण दिया गया है, भगवान कालिया के ऊपर नाच कर रहे थे तभी भी देवता लोग कोशिश कर रहे थे कि एक बार स्वर मिलाया जाए, मतलब उनकी इच्छा है कि भाई इनको हम लोग म्यूजिकल सपोर्ट देंगे ना, अभी आप अपने आप ही गा रहे हैं बढ़िया से, तो हमारा भी सपोर्ट रहेगा तो अच्छा, हमारे पास अच्छे अच्छे वाद्य है, वीणा है, सारंगी है, सितार है, बहुत सारे वाद्य हैं, हम लोग जरा भगवान की सेवा करेंगे उस प्रामाणिक भाव से। लेकिन उनका ऐश्वर्य भाव, जो कलाकृति का ऐश्वर्य भाव है, वो इनके माधुर्य से मिल नहीं सकता है। तो फिर क्या होता है मालूम है आपको, वो अपना बजाते रहते हैं, यहाँ पर अपना बजते रहते हैं। यूजुअली दिस इज द केस। रास में भी यही हुआ है, रास नृत्य में तो हर रोज भगवान ने रास किया, शरद पूर्णिमा के बाद चंद्र सरोवर में किया है, मोर कुटी में वो नाचते हैं मोरों के साथ में, सब जगह पर यही है। ओनली कोशिश, सिंसियर एफर्ट्स बट नो मैचिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये देवताओं की स्थिति है। क्योंकि मूलभूत भाव में अंतर है, इसलिए मैं शुरू में भी भाव की बात कर रहा था। जब तक ब्रज के भाव को हमारा भाव मैच नहीं करता है, तब तक हमारे लिए सब कुछ ये अन्न क्या कहते हैं उसको, ऐसा ही ऑब्लिवियस रहेगा, हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या चल क्या रहा है। कुछ बहुत सुंदर चल रहा है, दिव्य चल रहा है, इतना समझ में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या चल रहा है इसकी अनुभूति कभी होगी नहीं। और देवताओं को अपने ऐश्वर्य भाव छोड़ते नहीं है, माधुर्य को ग्रहण नहीं कर सकते, उनकी स्थिति ऐसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है उनका, तो केवल वो कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो मुरली है, इसका शिवजी ब्रह्मा जी, ये तो सब देवताओं के शिरोमणि ना, इनको सभी देवताओं के सभी गुण उनके अंदर उपस्थित है। गंधर्वों का गायन, किन्नरों का नृत्य और बाकी लोगों का बजाना, वो सब कुछ उनके अंदर निहित है, फिर भी वो भ्रमित हो जाते हैं। और भ्रमित होकर केवल महादेव भी ये सोचते हैं कि प्रणाम करना ही अच्छा है। एक और कहानी मैंने कल बताई थी, आज दोबारा बताता हूँ। एक जगह है गान बन नाम की, गान बन, उसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है, कल आप थे ना कल लेक्चर में, हाँ गेंदोवा, और तीसरा नाम क्या है, गिडो। तो उसमें भगवान ने गेंद खेली थी इसलिए एक नाम पड़ा है गेंदोवा। और वहाँ पर संगीत गोष्ठी ग्वाल बालों की होती है, तो वहाँ पर भी मुरली से आरंभ होता है, लेकिन वहाँ ब्रह्मा जी आके बैठते हैं तो सब दाढ़ी खींचते हैं उनकी ग्वाल बाल, ए चार मुख वाले कजू गाना बजाना आवे, तो दूसरा बोलता है अरे पोथिन से फुर्सत मिले तब गावेगा ना मतलब पढ़ाई से लिखाई से टाइम मिलेगा तो म्यूजिक व्यूजिक में आएंगे, ऐसा उनका मजाक उड़ा रहे। बोलो पोथिन से फुर्सत मिले तब गाए ना। फिर शंकर जी आते हैं, तो शंकर जी तो महादेव है ना, अभी ब्रज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। वो बाल बाल का बोलते हैं अरे डमरू बारे कछु आवे गावे बेको, तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे, नो रिस्पॉन्स। आप मजाक करो कुछ भी करो, बट वो उनका उनके मन में ये ब्रजवासियों के प्रति इतना महान आदर है कि आप चाहे तो मजाक करो चाहे आदर करो दंडवत करो अभिषेक करो कुछ भी करो, कुछ बोलेंगे नहीं, शांति से रहेंगे। हमको यहाँ आने को मिला यही बड़ी बात है, शब्द होकर बैठते हैं। तो क्या लिखा है कि सारे ऋषि मुनि जितने भी है जो पूरे ब्रह्मांड में अपने अपने वनों में गुफाओं में हिमालय में कहाँ कहाँ छुपकर अपना अपना भजन कर रहे हैं, जब ग्वाल बाल गाना शुरू करते ना तो गान बन में पंछी बनकर लाइन से पेड़ के शाखा पर बैठते हैं स्तब्ध, जैसे कि योग ध्यान में बैठे ना पूरा एकदम पूरा रैप्ट अटेंशन बोलते हैं उसको, ऐसे मग्न होकर सुनते हैं जब तक कि गाते रहते हैं। और है कौन, गाय चराने वाले बालक, अपेरेंटली इलिटरेट, अपेरेंटली कोई स्कूल में गए नहीं पढ़े नहीं, गोबर गोमूत्र से संबंध आया है, धूल माखन धूल से संबंध आया है, मट्टी में चलने की आदत है, हंसी मजाक करने की आदत है, कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं, फिर भी वो ये संगीत में सारे गंधर्वों को भी अवाक कर देते हैं जब गाने लगते हैं। और सब मुरली बजाने में एक्सपर्ट है बाय द वे, कृष्ण बलराम ही नहीं, कृष्ण ही नहीं बलराम भी, दोनों भैयाओं का वर्णन है भागवत में, और सारे सारे मुरली बजाने में एक्सपर्ट है। और इनकी किसी भी सबसे छोटे सबसे नए और सबसे कम अच्छा बजाने वाले ग्वाल बाल के साथ भी बड़े से बड़े देवता तुलना नहीं कर सकते हैं अपनी कला की। तो ऐसा नहीं कि ब्रज में ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन वो ऐश्वर्य बहुत महान ऐश्वर्य ब्रज में है, लेकिन माधुर्य इतना है कि वो ऐश्वर्य पूरा छुप जाता है, ढक जाता है पूरा। दूसरा श्लोक देखिए आप, उसी श्रीमद् भागवत के 35th अध्याय में, अपॉन हियरिंग द फ्लूट बुल्स डियर काउज गेट कैप्टिवेटेड, सभी प्राणी जन जितने भी है वो सब एकदम भाव विमोर हो जाते हैं, दिग्मूढ़ हो जाते हैं, और अपने मुंह में जो घास है वो चबाना भूल जाते हैं, और जिस मुंह में घास है वो ऐसा जॉ जो है ना उनका जबड़ा नीचे गिर जाता है, आधी घास है और ऐसा ही घास थोड़ी गिर जाती है, नेत्र ऊपर रहते हैं और अवाक होकर सुनते रहते हैं। फूड स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम देयर माउथ एंड ईयर्स बिकम अपराइट, मुंह में से दो प्रकार के उसमें बताया गया है कि जो घास खा रहे हैं अपने आप ही वो ऐसा ऐसे हो जाते हैं और मुंह से घास गिरने लगती है। कुछ बछड़े होते हैं गाय के, वो गाय का दूध पीते रहते हैं, कभी देखा ना आपको, हमेशा अपने गाय माँ के पास चिपके रहते हैं, तो वो इतने मग्न है माँ का दूध पीने में गाय के बछड़े, लेकिन जब ये मुरली की आवाज़ आती है ना तो वो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। कहाँ पर उनका मुंह है, आंचल के पास है, मतलब क्या कहते हैं उसको, अडर्स स्तन के, गाय के स्तन के पास उनका मुंह है ना, उधर ही तो दूध पी रहे, तो उसमें मुंह में दूध आया हुआ है ना खींचा हुआ, तो वैसे जब जबड़ा गिरता है ना ऐसे हो जाते हैं, तो मुंह से यहाँ से एक 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 बूंद जमीन पर गिरने लगता है और वो स्तंभित हो जाते हैं और चित्रपट की तरह दिखाई पड़ते हैं, ऐसा मुरली का प्रभाव बताया है। उसके आगे ये मुरली की आवाज़ सुनकर आकाश में हल्की हल्की गड़गड़ाहट होने लगती है, थंडर इन द स्काई, और आकाश से देवता बहुत सुंदर कोमल फूलों का वर्षा आरंभ करते हैं जब ये मुरली बजने लगती है, और बादल कृष्ण के मुरली बजाने में कोई बाधा ना हो इसलिए सूरज के सामने बादल को खड़े अपने आप को खड़े कर देते हैं ताकि उन पर छाया हो और वो बजाते रहें। अभी ये पढ़ते पढ़ते मुझे एक लीला याद आ गई, तो आगे भूलने के पहले बताना ज़रूरी है। तो बरसाने में एक गाँव है जिसका नाम है पाडर वन। आप लोग में से कितने लोग ब्रजेश्वर महादेव मंदिर में गए, नोट कर लीजिए, आपको वहाँ ले जाना है हमको। ब्रजेश्वर महादेव ये बहुत ही प्राचीन स्थान है, इनको बज्रनाभ ने बनाया था, भगवान के प्रपोत्र ने, और विश्वभानु महाराज ने कृष्ण लीला के अंदर ब्रजेश्वर महादेव के पास बैठकर तप किया था, तो वो तपस्थली है ब्रजेश्वर महादेव विश्वभानु महाराज की, उसकी लग के है पाडर वन। पाडर वन में गोपियाँ सांझ लीला के समय फूल बिनने के लिए आती हैं, वो फूलों के लिए एक मशहूर वन है पाडर वन। और पाडर वन के आगे एक वन है उसका नाम है राबड़ वन। क्या नाम बताया? ये तो जोर से बोलना चाहिए आपको, क्यों राबड़ वन बुलाया उसको? तो गोपियों ने भगवान को वहाँ रबड़ी खिलाई थी, इसलिए वहाँ का नाम राबड़ वन है। आचार्य बताते हैं कि लीला होने से धाम की निर्मित होती है। पहले राबड़ वन ही था वो, पहले ऐसा ही वन था। राबड़ वन कब बना? जब लीला हुई रबड़ी खिलाने की। हाँ, छठीग्रह कब बना? जब भगवान के षष्ठी का पूजन हुआ उस जगह पर जहाँ पर छठीग्रह आ जाए, षष्ठी देवी का पूजन हुआ तो नाम पड़ा छठीग्रह। तो लीला जो है वो धाम से भी ज़्यादा पावरफुल है, और क्योंकि वो कहीं भी उपलब्ध हो सकती है ना। लीला कैसे भगवान की, आप कहीं भी विशालनगर में कहो, पुणे में कहो, निगड़ी में कहो, गटर के बाजू में कहो, महल में कहो, ऐसी हॉल में बैठ के सुनो, लीला तो लीला ही है, हर जगह उपलब्ध है। कोरोना के टाइम पे सब जगह लॉकआउट था, लेकिन लीला को लॉकआउट नहीं था, लीला ओपन थी। कभी भी बैठ के जूम पे करो, घर पे करो, किधर भी करो। हाँ, भगवान नाम और लीला दो ज़्यादा दयालु हैं, और धाम अपनी जगह पर स्थिर रहता है, और रूप भी अपनी जगह स्थिर रहता है। तो कोरोना के टाइम पे रूप भी लॉकआउट में था, मंदिर सब बंद थे, और धाम भी लॉकआउट में थे, तो बचा क्या? नाम और लीला। और नाम और लीला में प्रैक्टिकली हमारे लिए ज़्यादा पावरफुल कौन है? वैसे स्पिरिचुअली पावर में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वली दयालु हैं, इक्वली कृपालु हैं, करुणामय हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक हमारा प्रॉब्लम हमारे अंदर है ना, तो हमारी स्थिति को देखते हुए नाम और लीला में कौन ज़्यादा पावरफुल है? क्यों? क्योंकि नाम जप करने में मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है कितना स्ट्रगल होता है। हाँ, क्या क्या यादें आती हैं, भूली बिसरी यादें सब जप के समय आ जाती हैं। हाँ, और अगर यादें नहीं आती है तो एक देवी आ जाती है सबके ऊपर हावी होने के लिए, वो है निद्रा देवी। वो रोज आती है, यादें कभी कभी आते हैं, लेकिन निद्रा रोज आती है। क्या कहें, भगवान को बाहर से हृदय में स्थित करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया जा रहा है, और सफलता उसमें कभी कभार किसी फेस्टिवल में मिल जाती है, लेकिन रोज के सर पर नहीं मिलती। नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम अपनी तरफ से पूर्ण स्वयं सिद्ध है, कृष्ण प्रेम देने के लिए नाम पूर्ण स्वयं सिद्ध है, लेकिन हमारे लिए वो रियलिटी नहीं है। तो फिर लीला में क्या होता है? कहते हैं श्रृण्वताम स्वकथाम कृष्णम, आगे क्या है? पुण्य श्रवण कीर्तनात्, बराबर है ना? हृदयंतस्य अभद्राणी विधु नोति सुरित्सताम। कथा जब होती है, अगर आप लोग जगह रहकर सुन रहे हैं तो, हाँ, एस्ट्रिक्स है, कंडीशन अप्लाई, ब्रैकेट में लिखा है, इफ यू आर अवेक एंड लिसनिंग केयरफुली, तो आपको भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है हृदय में बैठने के लिए, भगवान खुद आ जाते हैं। और खुद आते हैं तो भगवान कभी भी ऐसे ही बेकार नहीं बैठते हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। जब आके बैठते हैं तो बहुत गंदगी दिखाई पड़ती है, साफ कर देते हैं उसको, विधुन होती सुरित सताऊं, है ना? तो इसलिए आसानी से अगर भगवान के विषय में आकर्षण निर्माण करना है तो उसकी कथा आपको सुनना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने वो भागवत का अनुवाद कर रहे थे और बहुत सारा कुछ कर रहे थे प्रभुपाद जी, लेकिन फिर भी उन्होंने ना प्री टाइम, मतलब प्री मैच्योरली उन्होंने दशम स्कंद का कथा रूप अनुवाद पहले पैदा किया, और जॉर्ज हैरिसन को रिक्वेस्ट करके डोनेशन लेके पहले वो तीन खंड कथा रूप कृष्ण कथा, कथा रूप कृष्ण संग्रह जो है, कृष्ण नाम की किताब, वो प्रसिद्ध कर दी। उनको पता था कि ऐसे करना नहीं चाहिए एक्चुअली प्री मैच्योरली, लेकिन उनको पास समय नहीं था कि पता नहीं कितने साल जिएंगे, इसलिए उन्होंने रिस्क लेकर पहले वो तीन खंड कृष्ण कथा के पूरे 89 स्टोरीज, और जब अनुवाद श्लोक श्लोक करने का आया तो 10वें स्कंद के 14वें अध्याय तक ही ब्रह्म विमोहन लीला तक ही पहुंच पाए वो, तभी वो शरीर छोड़ के चले गए। आगे का उनके शिष्यों को पूरा करना पड़ा। तो प्रभुपाद जी को जानकारी थी कि मैं ज्यादा दिन टिकूंगा नहीं, तो वो भागवत तो लिख ही रहे थे, वो उसमें तो कथा है ना, फिर भी कथारूप लिखने की जरूरत क्या थी, क्योंकि कथा लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित करेगी। जिसको इंटरेस्ट नहीं भी है उसका इंटरेस्ट निर्माण हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं निर्माण होता है तो उसका भी एक फॉर्मूला है, कथा में रुचि कैसे पैदा करनी है। शुश्रुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निश्चय बनात। क्या अर्थ है उसका? अगर आपको कथा में रुचि चाहिए तो आपको साधुओं की सेवा करनी पड़ेगी। स्यान महत् सेवया, महान लोगों की सेवा, साधुओं की सेवा करेंगे तो कृपा के रूप में कृपा कथा में रुचि प्राप्त हो जाएगी। तो ये सब बातें कहां से निकली थी? आई होप यू आर विथ मी। तो कथा पाडर वन की है, जहां पर एक बार भगवान, जहां पर गोपियां फूल बिनने आती है वहां पर आ जाते हैं, तो भगवान वहां पर अपनी वेणु बजाना शुरू कर देते हैं। पहले क्या होता है, वेणु शुरू होती है ना, तभी गोपियां तो नहीं थी वहां पर कंगन और पायल बजाने के लिए, भगवान अपनी वेणी बजा रहे हैं। तो भगवान के लिए उनका ऑर्केस्ट्रा परिपूर्ण रेडी रहता है, तो मुरली बजाए ना, बादल लोगों ने सुन लिया, अरे भगवान मुरली बजा रहे हैं, वो थंडर शुरू किया उन्होंने, आयर थंडर आयर थंडर, तुरंत थंडर शुरू हो गया। और फिर उसको कहते हैं वारी बिंदु, यानी मंद मंद रिमझिम बरसात शुरू हुई। तो जब ये ऐसा हुआ तो मोर आकर्षित हो गए, मोरों को ना मुरली की आवाज़ और बादल की गड़गड़ा दोनों एकदम बहुत अच्छी लगती है, तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। तो इकट्ठा होकर वो हल्का हल्का नाच करने लगे मोर, तो भगवान को मुरली बजाते हुए जो शुरुआत की थी उन्होंने ऐसे ही शुरू की थी, तो बादलों ने सहायता दिया, वारी बिंदु ने सहायता दिया, मोर भी जुड़ गए, तो और भगवान को उत्साह आया, तो भगवान ने और प्रेम से मुरली बजाना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, बादल भी थोड़ा सा और बरसने लगे, और थोड़े से बिंदु ज़्यादा तेज गिरने लगे, और मोरों को और उत्साह आया, और तेज़ी से नाचने लगे। उसके बाद में ना अपना कैसा होता कीर्तन, धीरे धीरे, फिर वो हमारी बीबी गोविंद महाराज बोलेंगे ना, ऐसा बताते बीच बीच में, एक पट्टी ऊपर ले लो, तो फिर से वो गाने वाला जो है वो और एक पट्टी ऊपर लेता है, फिर हारमोनियम भी पट्टी ऊपर लेता है, इस तरह से क्रेसेंडो फॉर्म होता है। वैसे भगवान का मुरली वाले बजाने वाला जो कीर्तन था, मुरली की धुन थी वो बढ़ती 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 गई। उसके बाद क्या हुआ, धुआंधार वर्षा होने लगी, बहुत जोरदार गड़गड़ाहट होने लगी, मोर पूरे भाव विभोर होकर नाचने लगे, यहाँ तक कि वो मुरली पूरी गीली हो गई। तो मुरली गिले होने के बाद क्या होना चाहिए बताओ, आवाज़ नहीं आना चाहिए ना उसमें से, सॉल डैम्प ना हो, फिल्ड विद वाटर। फिर भी मुरली और ज़्यादा उत्साह से बज रही थी, तो ये सुनकर गोपियाँ फूल फूल बिन रही थी, वो भाग भाग के आई और देख रही है कि कितना भाग्य है इस मुरली का, भगवान के हृदय में जो रस भरा हुआ है प्रेम का, वो भगवान इसके छिद्र में से इसमें डाल देते हैं, और फिर वो भगवान अपने फूंक मारने से हाँ उसको वितरित करते हैं, और वो आकर हमारे दिल को छू लेता है और हमें भाव विभोर बना देता है। लेकिन देखो देखो इतना सुंदर ध्वनि आ रही है मुरली की, सबके दिल को लुभाने वाली, लेकिन वो मुरली को देखो जरा सा भी कम नहीं बज रही है, वो पूरे जोर से बज रही है, क्या भाग्य है उसके। हाँ, और आगे आएगा उसका वर्णन, वर्णन में लिखा है कि गोपियां कह रही है कि ये मुरली की जो माता है बैम्बू, वो कितना गर्व करते होगी अपने बेटी पर। हमारे लिए भगवान का, भगवान के जो आदर हैं वो शाम तक हमको वेट करना पड़ता है, वो भी गारंटी नहीं शाम के बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दिन भर हम वेट करते हैं, जब ग्वाल बाल गाय चराते रहते हैं, कब शाम होगी कब शाम होगी, कब हमारा मिलन का समय आएगा, उसके बाद भी भगवान के होंठों का अमृत मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। लेकिन ये देखो मुरली, हाँ दिन रात भगवान के होंठों से चिपकती रहती है, ना संकोच है ना कोई लज्जा है ना कोई मर्यादा है ना कोई नियम है इसके लिए, जब चाहे भगवान उठाते अपने होंठों को लगा देते और भगवान के अदर का अमृत हमेशा पीते रहते हैं। इसलिए वो माता उनकी बैम्बू जो है वो कितनी गौरव करती होगी। और पिता बोलते भगवान देवताओं को धन्यवाद देते रहते हैं कि हमें ऐसे बेटी दी आपने, ऐसे वर्णन किया गया है। तो यह हुई पाडर लर्न की, पाडर वन की लीला, जहाँ पर उन्होंने मुरली का बहुत गौरव किया है और भगवान मुरली बजाते रहे मुरली भीगती रही, भगवान के वस्त्र भीग गए, भगवान के वस्त्र उनके शरीर को चिपक गए, फिर भी भगवान मुरली बजाने में चूक नहीं रहे हैं, मोर नाचने में चूक नहीं रहे, उनके पंख भीग रहे हैं, आकाश से घनघोर वर्षा हो रही है, फिर भी निरंतर भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन हो रहा है। फिर आगे जाकर 3 नंबर और फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 30 में लिखा है कि जब बछड़े और बछियाँ स्तंभित हो जाती हैं, तो मैंने बता दिया आपको ये, तब उनके मुख से माता का दूध पी रहे हैं ना, वो माता का वो गाल गले में से उनके मुंह से नीचे नीचे जो गिरते रहता है, फिर उनकी आँखें भगवान को नेत्रों से ही आलिंगन देते हैं, जो आँखों आँखें नेत्रों में अश्रुओं से भरी होती है। फिर आगे इधर हिरणों का वर्णन आया, जब भगवान मुरली बजाते हैं ना तो हिरण जो है सब कुछ छोड़कर, घास खाना छोड़कर उनको और देखना आरंभ करते हैं, और बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, बार बार सामने देखते हैं, और नेत्रों से मुरली बजाने वाले भगवान की आरती उतारते हो। उनके पास नई धूप नहीं है, उनको दीपक नहीं है, उनके पास फूल नहीं है, चामर नहीं है, कुछ नहीं है, और सुखदेव जी कहते हैं कि वो नेत्रों से, केवल नेत्र उनके दो ऐसे आइटम्स हैं जो जिससे वो भगवान का पूजन करते हैं। ऐसे वो हिरणों का भाग्य है वृंदावन धाम में। फिर गोपी राधा से कहती है कि क्योंकि आपने ये मुरली बजाई, आप ये वेणु बजाते हो, तो सबसे ज्यादा सती पतिव्रता नारी है, सतीत्व जिसके अंदर है, मोस्ट चेस्ट लेडी राधा रानी, इनका भी सतीत्व जो है वो डिवाइड हो गया है, थोड़ा देर इसमें थोड़ा देर उसमें, क्योंकि वो शादी किसी से हो गई है लेकिन इनका दिल तो है वो कृष्ण में ही लगा हुआ है, क्योंकि मुरली इतनी तेज और कठोर है कि इनका सतीत्व का भी भंग कर देती है, ऐसे गोपियां प्रेम से कह रही हैं। आगे जाकर ऐसा वर्णन है ब्रज विलास स्तव में कहते हैं हमारे रघुनाथ गोस्वामी कि जब फ्लूट यानी मुरली वीणा से मिल जाती है और ये दोनों मिलकर गाते हैं, तो सारे हिरण जो है वो स्तंभित हो जाते हैं, एक ही जगह खड़े हो जाते हैं, और भगवान के मुरली की ध्वनि की ओर अपने कान खड़े होकर स्तब्ध होकर खड़े हो जाते हैं। उसके आगे कहते हैं कि जब राधा रानी को क्रोध आता है, ये भी व्रज विलासों में रघुनाथ दास जी गोस्वामी बताते हैं, जब राधा जी नाराज हो जाती हैं, रूठ जाती हैं, मान कर बैठती हैं, तो विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है जो उनको मना सकती है, तो उस समय वो लोग उनको अलंकार सुनाते हैं, हास्परिया सुनाते हैं, अलग अलग नकल करके दिखाते हैं, नाटिका करके दिखाते हैं उनका मनोरंजन करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती है। कृष्ण भी उनके चरणों में गिर जाते हैं, लेकिन कई बार मुरली उनकी सहायता में आती है और मुरली की आवाज़ सुनकर राधा रानी मान छोड़ देती है। हरे कृष्णा, इट वॉज ओनली कृष्णस फ्लूट विच विल पैसिफाई हर, ऐसा रघुनाथ दास जी बता रहे हैं। फिर उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी बताते हैं कि वृंदा देवी राधा जी और गोपियों को बता रही है कि इस मुरली की आवाज़ से ये जो जितने भी पेड़ पौधे हैं वृंदावन धाम में वो भी फले फूले हो जाते हैं, इतने आनंद से भर जाते हैं कि अपने आप को फल और फूल से भर देते हैं। ये जो हृदय को हिलाने वाला मुरली का आवाज़ है वो सारे गाने वाले पक्षियों को भी स्तब्ध कर देता है, सब पक्षी भी शांत हो जाते हैं जब मुरली की आवाज़ आती है। एट सनसेट द माउंटेन लाइक पीसफुल कंपोज ऑफ राधा इज ब्रोकन बाय थंडर बोल्ट ऑफ कृष्णस फ्लूट। राधा रानी जो अपने सतीत्व में बहुत पर्वत जैसी है, वो भी मुरली के वज्राघात से उनके संयम का भंग हो जाता है, और राधा रानी भी इतनी शालीन और कुलीन और सुंदर व्यवहार करने वाली मर्यादा वाली स्त्री है, फिर भी उसका व्यवहार जो है वो सैर बैर हो जाता है, ऐसे यहाँ पर वर्णन दिया है। एनीवेज लास्ट में विदग्ध माधव में कहा है, बलराम जी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली मैं सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इंद्र जो है वो रोने लगते हैं स्वर्ग में, और जब वो रोते हैं तो उनकी आँखों से जो अश्रु आते हैं उससे वर्षा कहते हैं, और वृंदावन उससे बहुत सुंदर हो जाता है, ऐसे बलराम जी बोल रहे हैं। देखो अद्भुत है ये वृंदावन। तो अभी यहाँ पर एक मेंशन मैंने रखा है कि ये जो मुरली है ना, ये सबको पता है, सब गोपियों को, कि ये मुरली जो है वही कृष्ण के एक सर्व आकर्षक होने का एक राज है अनेक राजों में से। तो बार बार ये मुरली को वो छीनते हैं, क्योंकि वो मुरली के द्वारा, मुरली को छीन कर कृष्ण को वश में करना चाहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान शयन कर रहे थे। कहाँ शयन करते हैं वो, रात को अपने घर पे करते हैं, और रात को शयन करते भी नहीं हैं और करते भी हैं, दोनों सही है क्या? आर दिस बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट? क्योंकि चलो इसमें भी एक लीला मुझे याद आ रही है, क्योंकि दो कृष्ण हैं वृंदावन के, एक है यशोदा कृष्ण और एक है गोपी कृष्ण। यशोदा कृष्ण जब अभी ग्वाल बाल जो है वो गाँव चरण के, गाय चरा के आते हैं, तो शाम को जो घर पे सोते हैं वो है यशोदा कृष्ण, उसमें से जो निकलते हैं वो है गोपी कृष्ण। जब सोने का समय यहाँ होता है तो वहाँ पर जगने का समय होता है रास में, तो वो चले जाते हैं, रात भर रास खेलते हैं, सुबह आके गोपी कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। और सुबह यशोदा जी लोहड़ी सुनाती है, मतलब जो लोहड़ी नहीं, सुबह के गाने भोपाली सुनाती है, तो जग जाते हैं वो। तो एक दिन अचानक ना यशोदा ने ये देखा कि गोपी कृष्ण आ रहे हैं, वो मेरे वाले में मिक्स हो रहे हैं, तो बड़ा उनको आश्चर्य लगा। उनको लगा मैं स्वप्न देख रही हूँ, कुछ सच देख रही हूँ, क्या भ्रम हो रहा है मुझे, पता नहीं मुझे क्या बीमारी हो गई, क्या हो गया है। लेकिन वो तो भ्रमित हो गई थी देख के, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि दो है, तो वो दोनों उनके सामने प्रकट हो गए और दोनों ने वंदन किया, और फिर दोनों में बहस हो गई, तू श्रेष्ठ के मैं श्रेष्ठ, गोपी कृष्ण श्रेष्ठ की यशोदा कृष्ण श्रेष्ठ। बाद में दोनों ने सुलह किया कि हम दोनों अपनी जगह बराबर हैं, कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, माता का भाव अलग है, इधर का गोपी का भाव अलग है, नो कंपैरिजन रिक्वायर्ड, बी हैप्पी बोथ यूनाइटेड एंड वेंट इन द लैप ऑफ यशोदा। तो इसलिए मैंने कहा कृष्ण सो रहे हैं, मतलब क्या, और एक जगह है कृष्ण के सोने की, वह है दिन में भोजन करने के बाद थोड़ा लेट जाते हो, किसी ग्वाल बालों के गोद में, कभी बलराम जी की गोद में लेट जाते हैं, फिर बाकी सारे किसी के गोद में सर रहता है और पैर किसी के गोद हाथ में रहता है, तो वो पैर को मसाज भी करते रहते हैं। ऐसे ही कृष्ण को एक बार कृष्ण सो रहे हैं, तो बहुत गहरी नींद होने के बाद राधा रानी वहाँ आती है, और अपने आने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसलिए अपने पेंजन निकाल के हाथ में बांध देती है बाजू में, और बिना किसी ध्वनि किए हुए बहुत शांति से सोते हुए कृष्ण के मुरली को जो कमर में लगाए उसको छीन के ले जाती, और फिर वो तुरंत कैसा था, चोर कैसे पता होता आपको, होते मेरा एक बार मोबाइल चोरी हुआ था बांके बिहारी के मंदिर में, मैं सब बहुत भाव से, फिर भाव की बात आ गई ना, भाव से प्रार्थना कर रहा था, और मेरा यहाँ पर पॉकेट था, तो उतने ही कद का लड़का आया, पॉकेट में उंगली डाला, मोबाइल लेके गया, लेकिन वो उसके हाथ में एक क्षण भी नहीं रहेगा, तुरंत वो ट्रांसफर करेगा, वो ट्रांसफर करेगा और कब मंदिर के बाहर किसी बड़े आदमी का पहुंच जाएगा आपको समझेगा नहीं, इतना स्विफ्ट ट्रांसफर होता है। ये चोरों का न पकड़े जाने का एक अच्छा नुस्खा है, चोरी का माल कभी मत रखते नहीं, तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे पास क्या, देखो किधर है, मैं कुछ किया, कुछ नहीं किया। राधा रानी तुरंत वो मुरली चोरी करके वृंदा देवी को दे देती है, वृंदा देवी तुरंत रूपमंजरी को दे देती है, और वो सब लोग ना वो मुरली वो एक एक करके देते हैं, तभी वो साड़ी में छुपा देते हैं उसको, साड़ी ऐसा कवर करते हैं ना पूरे, तो ऐसे कांख में दबा के ऐसे खड़े रहते हैं। कुछ लोग अपने बालों में छुपा देते हैं उसको, कुछ लोग साड़ी में छुपा देते हैं, और फिर तालियां बजाने लगते हैं। तो कृष्ण जग जाते हैं और अपनी मुरली ना पाकर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण को पता चलता है कि गोपियों ने ये सब इसमें से किसी ने किया है वो, तो क्या करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मुरली गई तो क्या हुआ, और बन जाएगी इसमें क्या, ऐसा करके एकदम ऐसा टॉपिक को ही ऐसा पूरा छोड़ देते हैं, मतलब एज इफ नथिंग इज हैपेंड। तो गोपियाँ भी शांत हो जाए, अभी थ्रिल खत्म हो गया ना, अभी देखो चोरी किया हुआ व्यक्ति का, चोरी किया हुआ माल उसको चाहिए अगर इसलिए व्याकुल है, तो ही चोरी करने में और पूरा आनंद है। अभी आप सुन, आपने चोरी किया और उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्या 500 रुपये क्या है, ऐसे ही गिर जाते हैं शॉपिंग मॉल में, निकालते तो क्या है, तो कुछ बड़ा थ्रिल नहीं है, तो चोरी का जो लीला का आनंद है वो समाप्त हो गया। तो कृष्णा ने कुछ अलग ही टॉपिक निकाला, और अलग टॉपिक निकाल के सब गोपियों को डांस करने के लिए प्रवृत्त किया, और डांस के ऐसे मुद्रा किया, हाथ ऊपर करो सब लोग, हाथ ऊपर करके एक के हाथ से मुरली गिर गई, मुरली पकड़ के दिखाई। तो आप क्या समझते हो अपने आपको, होशियार समझते हो? आपको लगा कि मैं भूल गया टॉपिक मेरा? मैं टॉपिक नहीं भूला, आपको बुला दिया मैंने टॉपिक, इसलिए आप भूल गए कि आपके कमर की इधर कांख में दबा के रखिए। अभी ऐसी कथाएं जब बताता हूं मुझे और नई नई कथा याद आती है, क्या करूं। तो अभी ग्वाल बाल कृष्ण सदैव चोरी करते रहते हैं, सदैव। जैसे एक्सपर्ट होता है ना ड्राइवर गाड़ी का, वो एक बार ड्राइविंग में इतना एक्सपर्ट होता है कि उसके क्लच वगैरह अपने आप चलते रहते हैं। मतलब इट्स लाइक यू डोंट डू इट कॉन्शियसली। ऐसे भी आप रास्ता घूम जाता है, सिग्नल पर रुक जाती है और चल जाता है आगे, ऐसे एकदम ऑटोमेटिक। इट्स लाइक कॉल्ड एज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो टेक ओवर करती है ड्राइविंग को अपने आप हो जाता है, इतनी आदत बनी रहती है। वैसे ही उनकी चोरी की आदत ऐसे नेचुरल हो गई है, मतलब बैठे बैठे कूटते बैठते सब नेचुरल चोरी करते हैं, उनको पता भी चलता है चोरी हो रही है। इतना चोरी का कंडीशनिंग है कि राधा रानी को मिलते हैं तभी बात करने में ऐसा गुम हो जाते हैं। कुछ देर बाद उनको ध्यान में आता राधा रानी को कि मेरा यहाँ का गहना ही गायब है। कुछ बात पता चलता है कि नथनी गायब है। बाद में पता चलता है कि एक हाथ पे कंगन ही नहीं है, ये रोज का है। और इनको पूछेंगे मुझे क्या पता, आप अपना अपना ख्याल करो ना, मुझे क्यों पूछते हो? अपने अपने गहन पहने पहन के आते हो और गायब हो तो मुझे पूछते हो क्यों भाई? फिर सब दो चार गोपियां आके पकड़ते हैं और इनके जेब में हाल लेते तो इनके गेंद में मिलता है। तो कहते हैं कि क्या है ना, मैं बात करता हूँ ना तो मेरा आपके चेहरे पर ध्यान ऐसा मंडराते रहता है जैसे भंवरा फूल में कैसे मंडराता है। तो मुझे वो चमकदार जो गहना है ना वो बहुत आकर्षित करता है। तो कब मेरे हाथ वहाँ तक पहुँचते हैं, कब उसको निकालते हैं और कब मेरे जेब में डालते हैं, मुझे खुद को ही पता नहीं रहता क्या करूँ मैं। लेकिन सब गोपियों को पता है ये बहुत शरारती व्यक्ति है। तो कभी ललिता का, कभी विशाखा का, कभी चंपकलता का, कभी राधा रानी के सारे जेवर इधर उधर करते रहते हैं हमेशा, और हमेशा घर में परेशानी होती है क्योंकि मैया पूछती किधर गए गहरे सब। तो हर बार क्या जवाब दें, वो कहते तुम इतनी क्या कहते हैं उसको, हाउ यू आर सो केयरलेस, इतनी गैर जिम्मेदार कैसे होती हो तुम, मैं इतना श्रृंगार करके भेजती हूँ आपको। तो भी रोज का ये कैसे बताएंगे, कृष्ण जो है ना वो चोरी करता है हमारा, वो बताने का भी काम नहीं घर पे, क्योंकि कृष्ण का नाम ले सकते हैं घर जाके। तो सभी लोगों को सभी बार अनंत बार परेशान करने के बाद में एक बार गोपियों की मीटिंग हुई, उन्होंने तय किया ये कृष्ण को अभी सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसा सबक सिखाएंगे ना कभी आगे चोरी नहीं करेगा, चोरी नाम का चे भी भूल जाएगा। सबने प्लानिंग किया और एक दिन लीला कैसे होती है, रोज उनको वो वन में मिलते हैं और रोज हमारे कृष्ण गोपियों को मिलते हैं, तुरंत पुलिस 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 बन जाते हैं। पहले खेलते रहते हैं, गोपियों को दिखते ही पूरा सा टैक्स कलेक्टर बन जाते हैं, अपना अपना पोजीशन लेते हैं, रास्ता बंद कर लेते हैं, ए कहाँ जा रहे हो आप लोग, चलो टैक्स निकालो, यहाँ से मक्खन ले जा रहे हो, दही ले जा रहे हो, इधर ले जा रहे हो, अपना हाथ भी ले जा रहे हो उसके अंदर, जो हाथ में इतने गहने लगे हुए हैं, अपना शीश भी लेके जा रहे हो, अपना चेहरा भी लेके जा रहे हो, अपनी आँखें भी लेके जा रहे हो, अपने सुंदर चरण कमल भी लेके जा रहे हो, हर एक आइटम का टैक्स देना पड़ेगा आपको। ऐसे करके बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और फिर हर बार वही झिकझिक करके, फिर मक्खन देना, फिर एक मटका तोड़ देना, फिर एक मटका ऐसे दे देना, ये रोज का खिटखिट है। तो उस दिन गोपियों ने क्या प्लानिंग करके रखा है, आज कोई खिटखिट करना ही नहीं है, इनको टैक्स कलेक्टर बनने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, वो टैक्स कलेक्टर बनने के पहले ही हम उनको अपना सब माल दे देंगे और ऐसा ऐसा माल बना के लेके जाएंगे कि वो भी एकदम सब टैक्स कलेक्टिंग भूल जाएंगे। तो आते ही उन्होंने बोला, वो अपना स्टैंड लेने के पहले बोला, अरे कोई जरूरत नहीं, आप लोग बैठ जाओ आराम से, बहुत बढ़िया भोजन बना के लाया आपके लिए, मक्खन मिछली जो चाहिए सब बना के लाया है, आपको आज दिल भर के खुश करने का प्लान है हमारा। तो सब ग्वाल बाल आकाश में देखते हैं, सूरज पश्चिम से आया गया आज उनको इतना आश्चर्य हो रहा है कि बिना झिकझिक ही मिल रहा है। तो कृष्ण कहते अरे छोड़ो ना उसको, क्यों ऐसा हुआ, क्यों सोचते हो, आप फल खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो। सब लोग लाइन से बैठ गए, अच्छी सुंदर पट्टी लगाई, सब गोभी ने थाली लगाई और इतने सारे व्यंजन, उसमें से दही प्रचुर मात्रा में, दूध प्रचुर मात्रा में, मक्खन सुगंधित मक्खन प्रचुर मात्रा में सब जगह बांट रहे और इतने प्रेम से गोपियां खिला रही, उसको भी आश्चर्य हो रहा है, अरे एक भी आर्गुमेंट नहीं हो रहा आज, पूरा दे रहे दे रहे दे रहे, बस कोई बिकने का नाम नहीं है कि जाके बेचना है, वो भी कुछ नहीं है, पूरा दे रहे सब। सबका पेट भर जाता है, लेकिन गोपियों ने तय करके रखा है इनको खिलाना है, खिलाना है और खिलाना है। तो वो पेट भरने के बाद भी खाओ और खाओ और खाओ करते हैं ना, तो फिर ऐसा थोड़ा साइड में आ जाते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर और भारी हो जाते हैं, तो ऐसा लेट जाते हैं जमीन पर। उधर भी खिलाते हैं उनको, खिलाते खिलाते जाते हैं, मतलब वो भी सब लोग लेफ्ट साइड में सोकर खा रहे हैं और बोल रहे हैं और खाओ, अरे इतना सब लाया कौन खाएगा, वो खाओ खाओ, और इतना खिलाते हैं कि वही सब लोग सो जाते हैं। और अभी इतना, अभी आपको पता है ना ब्रजवासी लोग कैसे खाते हैं, पता है आपको? मुझे पता है, हमारे हॉस्पिस में एक ब्रजवासी, बांके बिहारी के ब्रजवासी थे, वो लास्ट स्टेज में आए थे, और कहते हैं कि लड़का कहते हैं कि थोड़ी बहुत मिठाई खा लेते हैं रोज। तो मैंने कहा कितनी खाते हैं? तो सुबह 1 किलो, शाम को 1 किलो। और वो कैसा, लास्ट स्टेज में, स्टेज 5 में कैंसर में है वो। पर हमने उसको बोला है अपने कैंसर, अपने हॉस्पिस के हिसाब से कि भाई अभी को रजिस्ट्रेशन मत करो, जो दिल में है वो खिला दो उनको। तो बाबा को पूछा, बाबा क्या खाना है? बोला 1-1 किलो मिठाई सुबह शाम लाया करो। तो बच्चा, बेटा भी मुझे बता रहा है, हम पापा को बोला 1-2 किलो खिलाओ, प्रॉब्लम नहीं है, जो खिलाना है वो खिला दो। कहने का तात्पर्य क्या है, कैपेसिटी क्या है खाने की, वो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को 2 टुकड़ा देते, हम पैक हो जाते हैं, शुगर भी ऊपर से है, वो अलग खाते हैं। तो ऐसे ब्रजवासियों ने, गोपियों ने इतना अच्छे अच्छे मिठाइयाँ खिला के, और ये खाने की कैपेसिटी भी बहुत है, उनको भी पैक कर दिया उन्होंने, और इतना मिठाई, इतना व्यंजन खिलाए, इतना पकवान खिलाए कि सब लोग डारा डूर सो गए उधर। फिर उन्होंने अपना सब वो बर्तन वर्तन समेट लिया, और थोड़ी देर के बाद में आए, और फिर ना रुई लेकर आए, रुई, और ठीक से देख रहे हैं सब लोग, ठीक से सोए ना, सब लोग खर्राटे मार रहे हैं बहुत ज़ोरदार, इतना सब जितना जितना खिलाया था ना, वो सब आवाज़ कर रहे हैं नाक में से। फिर उसने बाद में कृष्ण के सभी, कुछ गोपियों को ऑलरेडी प्लान करके रखा था ना किसको क्या करना है, तो कृष्ण के पास सब कुछ गोपियाँ आई और सारे जेवर उतारे, पैर से शुरू किया पूरे पायल, वो पायल में कैसे होता पता है ना आपको, वो 3-3 पायल कस के माता बांधती है उनके, क्योंकि नटराज है ना ये, ऐसा नाचते ना, जब कभी नाचते हैं विभान होकर, 2-2 मील तक दूसरे वन में जाके गिरता है पायल, बांध के भेजे थे 3 और घर पे लेके आए 1, इसलिए वो कस कस के बांधती है। तो वो भी निकाला सब, कमर कांचनी, कमर बांध था ना, कमर पट्टा निकाला, गले के हार सब निकाले, और सबसे इम्पोर्टेंट मुरली, सबसे प्रेशियस है इन सब में से, बंसी प्रिय सखी है, हाँ सबसे अधिक सखी, प्रिय सखी जो है वो बंसी है भगवान की, राधा रानी के अलावा। यहाँ का जो है ना मोर पंख, सोने की साखड़ से बांधते हैं उसको, वो निकाल दिया, गले का, कुंडल, कान का, सब 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 खाली कर दिया पूरा, खाली पीताम्बर छोड़ दिया, आगे सब निकाल दिया, उत्तरीय वस्त्र भी निकाल दिया, और सब गोपियाँ गायब हो गई। अभी जब भी वो पेट के अंदर के 50 व्यंजन थोड़ा थोड़ा अपने अपने जगह पर गए, तो फिर ये उठे, अरे कृष्णा, अरे कुछ भी नहीं है, ना अंगूठी है, ना कलाई बंद है, ना कुछ बाजू बंद है, ना कुछ नहीं है। तो समझ गए कृष्ण उठ के, ये सब राधा रानी गोपियों का कमाल है। तो कोई बात नहीं, ठीक है घर चलते हैं। तो घर पे गए तो मैया को जवाब दे रहे ना, मैया बोल रही है क्या है सब, ये किधर गए सब? बोले कोई बात नहीं, 1 दिन का मामला है, कल तक सब वापस आ जाएगा। अभी मैया को पता है ना, मैया भी बहुत विजिलेंट है, क्या क्या बांध के भेजा है रोज उसको, तो वो पता है उसको कि एक सेट आज दिया है तो अगला सेट कल पहनेंगे, तो ये सेट अपनी जगह पे जाना चाहिए ना उसको। तो मैया बहुत बहुत खोद खोद के प्रश्न पूछते, तो कहते नहीं ऐसा ऐसा है। तो फिर सो जाते, रात का विधि होता है, सो जाते। अगले दिन एक बहुत सुंदर सखी जो है ना, बड़ा घूंघट ओढ़कर माता के सामने आती है प्रणाम करने के लिए, प्रणाम कर रही है। तो मैया ना जैसे पूरा घूंघट ओढ़ के रखा है ना, खाली हाथ ही दिख रहे हैं, इतने सुंदर हाथ, इतने लंबी लंबी उंगलियां, इतने सुंदर अलंकार पहने हुए हैं। वो कह रहे, अरे गोपी तू कहाँ की है? बोले मैं नई नई ब्याही हूँ नंदगांव में, अभी अभी आई हूँ। तो कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जा मेरे पास, तुझे देख मेरे मन में बड़ा प्रेम हो रहा है, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ा माखन वाखन खा ले फिर जाना। तो ये पूरा घूंघट उड़ा देती है, तो क्या है, श्री कृष्ण भगवान गोपी बनकर खड़े हैं। अरे लाला तू है, ये क्या है? मैया शाम तक पता चलेगा, डोंट वरी, अभी जाने दो मुझे। फिर घूंघट ओढ़ते हैं, फिर लंबा घूंघट मार के पहुंच जाते हैं बरसाने। तो अब तक तो ठीक चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। कुछ गोपी आ जाती है, फिर तुरंत हे कृष्णा करके तुरंत गिर जाती है बेहोश। तो गोपी बोला अरे कौन सी गोपी है ये, नाम लेते बेहोश हो रही है। कोई ईर्ष्या नहीं मन में उनके कि हमसे ज़्यादा प्रेम करने वाली नई गोपी कौन सी कहाँ से आ गई, नहीं उनको आदर लग रहा है, अरे हमसे भी इतना प्रेम है उनसे, नाम लेते ही बेहोश हो गई। तो उसको होश पे लाते हैं। तो कुछ देर उठ के बोले कहाँ जा रही हो, राधा रानी के बारे में सुना है, उनको मिलने जा रही हूँ। कहाँ से आई हो, बोले नंदगांव से आ रही हूँ। अभी अभी नई नई हो ना, नई नई हूँ, बाहर से शादी होकर नंदगांव में आई हूँ और राधा रानी के बारे में बड़ा गौरव सुना है, इसलिए उसको मिलने के लिए आई हूँ। ये नहीं बता रही कि मुझे कृष्ण पर बहुत प्रेम है। उनको आश्चर्य क्यों हो रहा है कि कृष्ण का नाम लेते बेहोश क्यों हो रही है, इतनी भक्ति है इसके अंदर। तो और गोपियाँ इकट्ठा होती है और आगे चले जाते हैं, तो और गोपी आ जाती है वापस, हे श्याम सुंदर करके वापस गिर जाती है। तो जब इकट्ठा हुई पहले वाली बाद वाली सब अचंभित हो जाती है। ऐसे करते करते ना गोपियों को इकट्ठा करते 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 50 बार बेहोश होते 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 उनको समझ में आता है कि राधा रानी को मिलाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो यहाँ पर है नहीं, राधा रानी इसको बहला सकती है इसके विरह को। चलो उसको राधा रानी के महल लेके जाते हैं। तो राधा रानी के चौखट तक लेके आते हैं और इतने जोर से पुकारते हैं, हे श्याम सुंदर बोलो, अरे इतना बोलने थोड़ी राधा रानी आएगी बाहर, थोड़ा जोर से पुकारो। ऐसे कह के वो बेचारी गोपी वहां पर बेहोश हो जाती है। इतनी बार गिरी, चढ़ते हुए समय से होश में आई, मतलब पहले जल्दी आ गई बाद में देर से आई। ऐसे करते 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 अभी जो गिरी ना, मैंने कितना कोशिश किया वो जगी नहीं रही है, कितना कोशिश किया, कितना जल का छिड़काव किया, हिलाया उलाया, हवा दिया, क्या क्या किया, सब सखियां आ गई, ललिता विशाखा सब लोग आ गई है, लेकिन इसका उठने का नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि फिर रुई का एक पीस लेके आए और नाक पर लगा के देखा कि जीवित भी है कि चली गई, तो रुई की सांसें चल रही थी, वो दिखाई पड़ रहा था रुई हल रही है, मतलब जीवित तो है लेकिन बहुत गहरी बेहोशी में है। अभी ललिता विशाखा के पास ये इश्यू आ गया कि क्या करें, कुछ करें, कुछ करना चाहिए, तो ये मर जाएगी तो हम लोग कितने दुखी हो जाएंगे, इतनी बड़ी प्रेमी गोपी हमारे यहाँ पर आकर शरीर छोड़ दिया उसने, हमारे लिए अच्छा नहीं है ये। तो ललिता विशाखा डिस्कस करती है क्या करना चाहिए। उतने ललिता कहती है आइडिया, कल ही हमने कृष्ण के सारे गहने चुरा लिए थे, क्यों ना हम में से कोई जाकर तुरंत राधा रानी को जाकर वो सब पहनाए और उनको अपनी तरफ से पीताम्बर पहना के कृष्ण बनकर खड़ा करेंगे तो इसका थोड़ा सा विरह अग्नि शांत हो जाएगा, कम से कम जीवित तो रहेगी नंदगांव तो लौटने के लिए। ये बढ़िया आइडिया है क्योंकि कृष्ण के सारे गहने सारा अलंकार हमारे पास में है। तो पीताम्बर लाते हैं और कुछ गोपियाँ यहाँ पर हवा दे रही है, कुछ गोपियाँ वहाँ पर अंदर जाके जहाँ पर श्रृंगार छुपा के रखा है राधा रानी के महल में, वो सब लेकर पूरा राधा रानी को कृष्ण बना देते हैं, पूरा एकदम बिल्कुल मोर पंख लगा के, पूरा सोने की संकल लगा के फर्स्ट क्लास लेके आते हैं, पूरा बाल बाल बांध के जिस तरह से, और बाहर लेके आते हैं, बोलते राधे अभी कृष्ण की तरह खड़े हो जा त्रिभंग, और फिर उस गोपी के कान में जाके कहते हैं गोपी, वो गुस्से में नाम बताया है पहले श्यामा गोपी, हे श्यामा गोपी देखो श्याम सुंदर जी आए हैं, अभी तो उठो। तो ना इतनी देर से बेहोश है वो, कई घंटे हो गए उसको, कोई हिलने का नाम नहीं है, कुछ हार्ट बीट का चिन्ह नहीं है, खाली हवा थोड़ी चल रही है, इतने जोर से कूदती है ना वो, ऐसे पूरा घूंघट उंगट छोड़ के ऐसा पूरा कूदती है कि पूरा वो सखी बेश पूरा नीचे गिर जाता है और श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। हमसे चालाकी, हाँ सरदार से चालाकी करते हो, चलो उतारे सब कुछ उतारो, सब गोपियों का मुंह जो है लटक रहा नीचे, एवरीबॉडी इज लुकिंग डाउन, उनको लगा कि हमने कितना बड़ा काम किया, कल भी किया आज भी किया। बोलते हमारे साथ गुस्सा की नहीं करना कभी, चलो उतारो सब कुछ, अभी ऐट से खड़े ऐसे, हाँ। और सखियां भी बहुत थर झुका के शर्मिंदा होकर एक एक गहना उतार रही है और इनका भी श्रृंगार कर रही है, पैरों से शुरू करते हैं पूरा करके 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 लास्ट में क्या देते हैं, मुरली, सबसे लास्ट श्रृंगार है वो, सब देने के बाद में जाने के समय हाथ में मुरली देना है, फिर भगवान अपने माँ को ऐसा पोज दिखाएंगे फिर जाएंगे, तो सबके लास्ट में उनके हाथ में मुरली आती है, तो फिर सब कुछ पहन के ऐसा पोज देते हैं, ऐसा दिखा के चले जाते है ना, ऐसे हमारे कृष्ण हैं। तो ये मैं जब पढ़ रहा था मुझे याद आया कैसे अपने गोपियों को वो हमेशा 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 ट्रिक करते हैं और हमेशा परास्त कर देते हैं इस प्रकार की लीला में। बाकी लीला में हमेशा वो खुद परास्त होते हैं, बात अलग है, लेकिन गोपियों को बता देते हैं कि आखिर में चोरों का सरदार तो मैं ही हूँ। यस सर, हाँ वो आ रहा हूँ मैं, लिस्ट में है वो, हाँ है वो है। देखो प्रभु जी ने बताया, तो अभी पहले मुरली की बारिश के बारे में बताता हूँ। तो वो जावट में राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ ना, जब ब्रह्मा सम्मोहन लीला थी, तो कृष्ण के निर्देश से पूर्णमासी के सहयोग से सारे गोपियों का, सारे उपवर गोपियों से विवाह हुआ, गोपों का है ना। तो उसमें राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ में हुआ, और अभिमन्यु जटिला का बेटा है, कुटिला का भाई है, घर जावट में है, कोकिला वन के पास में है, नंदगांव के भी पास में है। तो वृषभानु महाराज ने ना बड़े ही प्रेम से अपने, क्यों जानते थे वो जटिला कुटिला बहुत थोड़ा जटिल और कुटिल है जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड, कुटिल यानी कनिंग, बहुत कपटी भाव स्वभाव, बट ट्रांसेंडेंटल ना, ट्रांसेंडेंटल कॉम्प्लिकेशन, ट्रांसेंडेंटल जटिल एंड कुटिल दोनों भगवान के लिए सेवा में। तो उनको थोड़ा सा शांत रखने के लिए उन्होंने एक बड़ा महल बना दिया टील के ऊपर। आज भी जो मंदिर है ना जावट का, वो वृषभानु महाराज ने बांधा हुआ मंदिर है, मतलब घर है जहाँ पर अभी मंदिर है, जहाँ पर जटिला कुटिला अभिमन्यु राधा रानी का उधर विग्रह है, थोड़ा ऊंचाई पर है, वहाँ से वो कोकिला वन दिखाई पड़ता है, वो कौवा में खड़े हुए शनिदेव भी दिखाई पड़ते हैं और कोकिला वन इस तरफ है। तो अभी ये तो लीला समाप्त हो गई ना, अभी ब्रह्मा सम्मोहन की लीला, जब ब्रह्मा जी वापस आए, सब ग्वाल वालों को वापस दे दिया, तो भगवान जो बने हुए थे, भगवान ने अपना रूप सब ले लिया, रूप सब क्या करते हैं उसको अदृश्य कर लिया पूरा, कि एक्सपांडेड ना, तो ये रिट्रैक्टेड ऑल द फॉर्म्स, तो खाली अकेले हो गए, और ब्रह्मा जी ने अपने पुराने जितने ग्वाल बाल चोरी किए थे उसको ला के दिए। तो आचार्य बताते हैं कि एक साल भगवान ग्वाल बाल बनकर सभी गोपियों के पास रहे पति बनकर, और एक्चुअली पति पत्नी का उनका रिश्ता एस्टैब्लिश भी हुआ था, लेकिन जब वो अदृश्य हो गए और असली ग्वाल बाल आ गए तो उनको क्या लगा होगा, व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड बी डूइंग, क्योंकि भगवान की लीला का आयोजन इतना संपन्न होता है, इतना परिपूर्ण होता है कि भगवान ने गोपियों ग्वाल बालों को सबको हृदय में वो अनुभूति देके रखी थी कि आप केवल नाम मात्र पति हो, केवल हमको मिलने के लिए विरोध करना ये आपकी सेवा रहेगी, ताकि हमारा उनका प्रेम का जो कश्मकश है ना, विरह लीला जो है वो बनी रहेगी और परकीय भाव ब्रज में बना रहेगा। तो अभी फिर सारे ग्वाल बाल अपने पोजिशन पर आ गए पति बनकर, और कृष्ण का राधा रानी का प्रेम तो वैसा ही है, तो अभी कृष्ण की राधा रानी ससुराल चले गई है, और वहाँ पर अभी उनको मिलने का नया नया ढूंढना पड़ता है नुस्खा, क्योंकि जटिला कुटिला का भी एक ही काम था, केवल ये जो कन्या है ये शादी से पहले से ही कृष्ण से मिली हुई है, तो कैसे भी करके शादी के बाद में कृष्ण से उनको मिलने को देना नहीं है, बस किसी भी तरह से देखना है कि कृष्ण से इनकी मुलाकात ना हो। तो फिर भी एक दिन क्या होता है, अभी बहुत सारी लीला है, मैं कुछ कुछ आपको बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि राधा रानी के ऊपर यशोदा माई का भी बहुत प्रेम था, तो आए दिन प्रेम से राधा रानी का कुछ ना कुछ भेजती रहती थी, कुछ ना कुछ भेजती रहती थी। तो एक दिन उन्हें बड़े बड़े बक्से में बड़े बड़े वस्त्र अलंकार एक बक्सा पूरा पैक किया उसके लिए, तब तक कृष्ण आए और पूछा मैया क्या कर रही हो, तो ये क्या हो रहा है, तो ये बॉक्स बनाया जा रहा है, और किसके लिए बनाया जा रहा है, राधा रानी के लिए बनाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जावट भेज रही हूँ, अच्छा देखो क्या मैं उसके अंदर क्या है, देखो देखते हैं, गहने हैं, अलंकार है, कपड़े हैं बहुत सारे, तो ठीक है। तो वो किसी को बुलाती है, आ जाओ इसको लेके जाओ, तो कहते हैं कि अभिमन्यु स्वयं आए हैं और आज अभिमन्यु को ही बुलाया है लेके जाने के लिए, तो कोई बात नहीं ठीक है अभिमन्यु को बुला लो, और मैया चले जाती है, नौकरों को बोल देती है कि अभिमन्यु को बुला लो और सौंप दो इसको, तो कृष्ण वहाँ खड़े हैं, जैसे मैया जाती है और सर्वेंट जाता है निकल के भगवान अपने साथियों को बुलाते हैं और सारा बॉक्स खाली करते हैं और सामान तुरंत ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, और खुद बैठ जाते हैं, बाहर से बंद करने को बोलते हैं। कुछ देर बाद अभिमन्यु आता है और कृष्ण जिस पिटारे में बैठा है वो पिटारा लेकर जावट की ओर जाता है, और सर्वेंट के द्वारा यशोदा माई ने मैसेज दिया हुआ है कि ये पिटारा जो है, ये बॉक्स जो है, ये सीधे जावट में, घर में, राधा रानी के कक्ष में, राधा रानी के ही पास पहुंचना है। बीच में किसी जटिला गुटला को देना नहीं है, इसको राधा रानी के कमरे में पहुंचाना है, बस स्ट्रेट डिलीवरी टू द पर्सन ओनली। तो अभिमन्यु बेचारा भी उठा के ले जा रहा है उसको, उसको लगता है कि गहने हैं, कपड़े हैं, और कौन है उसके अंदर, कृष्ण भगवान है। और कहने के अनुसार, मैसेज के अनुसार, अभिमन्यु स्वयं वो पिटारे को कृष्ण राधा रानी के कमरे में छोड़ के देता है और कहता है कि यशोदा मैया ने भेजा है, फुर्सत में निकाल देना। तो राधा रानी दरवाजा बंद करती है, पिटारा खोलते हैं, कृष्ण बाहर निकलते हैं। अभी देखो ना, शत्रु पक्ष के अंदर के कोने में इनका संग चल रहा है। इमेजिन, इतना एंटराज है पूरा जावट का, पहरेदारी का, उसके बीच में इनका मिलन हो रहा है। तो क्या हुआ, उतने में कुछ सखियाँ आई, जटिला कुटिला की सहायिका, तो एक पुरुष की आवाज़ सुन रही है, एक राधा रानी की आवाज़ सुन रही है। दरवाजा बंद है, वो अंदर से दो व्यक्ति की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जो गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। तो कान लगाया तो ये तो कृष्ण की आवाज़ है, इसका मतलब कृष्ण अंदर आए मिलने के लिए। तो तुरंत खबर कर देते हैं जटिला कुटिला को कि आपको पता नहीं है, कृष्ण अंदर बैठे हैं, राधा रानी के कक्ष में कृष्ण बैठे हुए हैं। तो वो बोले चलो चारों तरफ से घेर लो, हम तुरंत दरवाजा तोड़ के अटैक करते हैं अंदर। तो आपने कभी देखा है आपके पैर पर मक्खी बैठती है और आप उसको मारना चाहते हो, तो क्या होता है, आप खुद को ही मारते हो, मक्खी उड़ जाती है ना। कई बार ऐसा करते हो आप और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर मक्खी गायब हो जाती है। वैसे ही इनका दरवाजा खोलना और कृष्ण का खिड़की से कूद कर गायब होना एक साथ में, समझते नहीं है। जब खिड़की खोल के 1 2 3 करके खोलते हैं तो कृष्ण इज नॉट देयर। लेकिन सब गोपियां जो आई हुई है ना जटिला कुटिला के साथ, वो देखती है कि बिस्तर पे मुरली पड़ी हुई है। तुम कितनी भी चालाकी करोगे ना, हमको पता है कि तुम हमारे नजरों से बच नहीं सकती है। ये मुरली किसकी है, तो कृष्ण यहाँ पर आए थे, इसका अर्थ हुआ कृष्ण यहाँ पर आए थे। तो राधा रानी से बोल लेती है, नहीं नहीं मैया, कल रात को मुरली की वर्षा हुई थी। देखो आप, सब जगह मुरली है, सब जगह मुरली है, तो क्या बकवास करती हो। बोले जाओ आपके कमरे में जाके देखो, सासू जी आप देखो, नंदी जी आप भी देखो, सब अपने अपने कमरे में जाती है, तो सबके घर में मुरली ही मुरली है, एक नहीं अनेक मुरली है। फिर बाहर आंगन में आते, आंगन में मुरली ही मुरली है, उसके घर में मुरली मुरली है, पीछे मुरली मुरली है, गौशाला में मुरली ही मुरली है, किचन में मुरली ही मुरली है। तो राधा रानी कहते, मैंने आपको कहा था ना कि ये मुरली, वो बरसात की एक मुरली अंदर आई थी, वो इधर पड़ी हुई। ऐसे भगवान चटपटी लीला करते हैं। तो और कुछ प्रभु जी फरमाइश। हरे कृष्णा। तो ये मुरली की विशेषता ये है कि राधा रानी ने ही श्री कृष्ण को मुरली बजाना सिखाया है। और भगवान का नाम मुरली मनोहर है, वो पूरे विश्व को अपने मुरली से पागल बना देते, सब ब्रह्मा से लेकर विष्णु से लेकर। अभी देखो एक बार ऐसे हुआ, काम्यवन भगवान की बहुत बड़ी प्रेम की गौचारण की स्थली है काम्यवन। तो काम्यवन में वो बताया था मैंने कल परसों भी, याद है क्या आपको, काम्यवन में संध्या का समय होता है और भगवान गौचारण कर रहे हैं। हाँ, भगवान जब गौचारण कर रहे हैं तो सूरज अस्त में जाने को हो रहा है, इसका मतलब गौचारण समाप्त होने को आ रहा है और गोपियों का मिलन का समय शुरू होने को जा रहा है। तो गोपियां वहाँ पर व्याकुल है और ग्वाल बाल थोड़े दुखी हैं कि अभी हमको कृष्ण को छोड़ना पड़ेगा। तो उसने में गोपियां वहाँ व्याकुल है और ग्वाल बाल भी यहाँ पर दुखी है, उसमें कृष्ण गायब हो जाते हैं और वहाँ पर शंकर जी का एक पहाड़ है, वहाँ पर टॉप पे चले जाते हैं और अपना मुरली खोलकर बजाने लगते हैं। फिर देखो क्या होता है, आगे सुनते रहिए। सब गोपियाँ प्रेम विवल होकर मूर्छित हो गई, जहाँ पर भी वो इंतजार कर रही थी कृष्ण का। सभी देवी देवताएं कंप्लीटली भ्रमित हो गए और कामदेव का तना हुआ जो बाण थे वो सब देवी देवताओं के हृदय में घुस गए, यानी कामदेव का प्रभाव सबके ऊपर आसानी से हुआ जब भगवान की मुरली बजने लगी। फिर क्या हुआ, सभी गोपियों के निभि बंद ढीले होकर खिसकने लगे, मतलब ये जो होता है ना कमर का, वो सब ढीला होकर खिसकने लगा। चार प्रकार के जीव मोहित हो गए, मतलब पेड़ पौधे पक्षी, हाँ ऐसे प्रकार के चार प्रकार के जीव हो गए। नदियाँ रुक गई, स्थिर हो गई, भंवरे के रूप में घूमने लगी और पीछे चलने लगी नदियाँ। पर्वत पिघलने लगे, ब्रह्म शिव इंद्र गर्भदोषाय विष्णु शेषनाग झूलने लगे। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ जो है ना वो पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग में गई, सभी देवताओं को झुलाई, उसके बाद में ब्रह्मा लोक में गई, ब्रह्मा को भ्रमित किया, उसके बाद में शिव जी को भ्रमित किया, ब्रह्मांड को पार किया, गर्भदोषाय विष्णु को भ्रमित किया, वो डोल रहे हैं अपने अपनी शेषैया पर। फिर वहाँ से बाहर निकले ब्रह्मांड से, फिर कारण उदकशाही विष्णु सो रहे थे, वो जग गए महानिद्रा से, योग निद्रा से, और वो झूलने लगे, अनंत शेष झूलने लगे। उसके बाद विरजा नदी को पार करते हुए वो मुरली की आवाज़ वैकुंठ में गई, और वैकुंठ तो अनंत वैकुंठ है, हर एक वैकुंठ में एक एक विष्णु का स्वरूप है, वो सारे विष्णु के स्वरूप जो है लक्ष्मी के साथ डोलने लगे ऐसे ऐसे भाव विभोर होकर मुरली की आवाज़ सुनकर। और कहते हैं उसके बाद वो गौलोक की गोपियों तक पहुँची आवाज़, वो चरण पहाड़ी जगह है जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, चरण पहाड़ी जब महाराज कृष्ण भगवान ने मुरली बजाई थी तो वो ऐसे सारे स्तरों को कवरिंग्स को पार करते 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 गौलोक तक पहुँच गई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कृष्ण मुरली बजा रहे थे तो गोपियों को बता रहे थे डोंट वरी मैं भी आ रहा हूँ, और ग्वाल वालों को बता रहे चिंता मत करो मैं यहीं हूँ। इस तरह से वो अभी स्थान है जहाँ पर छठे स्वर में मुरली बजाने के वजह से वो पत्थर जो शिव जी का था वो पिघलने लगा था, और वहाँ पर गैया के खुर के निशान, भगवान के एक पूरा एक आधा पैर के निशान, मुरली के निशान, लकुटों के निशान सब उस पर पत्थर पर पड़े हुए हैं, और वो अभी भी वहाँ पर चरण पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसे जब भगवान की मुरली बजती है तो वो सारे ब्रह्मांड का आवरण भेदन करके सभी लोगों को पार करके परे परे चले जाती है। तो एक तरह से भगवान की जो मुरली है बचा गया कहानी अभी, ठीक है लास्ट में बताता हूँ उस बात को, अभी पहले बता देता हूँ आपको कि भागवत में वेणुगीत में गोपियाँ क्या कहती है कि जब व्हाट ऑस्पिशियस एक्टिविटीज द फ्लूट मस्ट हैव परफॉर्म्ड टू एंजॉय द स्वीटनेस ऑफ कृष्णा लिप्स, क्या तपस्या की होगी इस बांबू ने कृष्ण को स्वतंत्र रूप से जब चाहे वो छू सकती है उनके होंठों को, और उसका जो स्वाद है वो ध्वनि के रूप में हमारे लिए छोड़ देती है। फॉर हुम द नेक्टर वॉज एक्चुअली इंटेंडेड, क्योंकि गोपियों को लिए जो प्रेम रस का अमृत भगवान निर्माण करते हैं वही मुरली को उपयोग करके उसके माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं, ऐसे गोपियाँ स्वयं कह रही हैं। द फोर फादर्स ऑफ फ्लूट द बैम्बू ट्रीज शेड टीयर्स ऑफ प्लेजर, तो पिता जो हैं पिता वो सब अश्रु बहा रहे हैं गौरव से, और हिज मदर यानी कि वेणु की माँ जो है वो गंगा जमुना किनारे रहती है वो आनंद विभोर होकर बार बार रोमांच खड़े हो रहे हैं, ऐसे गोपियाँ कह रही हैं, ठीक है। और भगवान के कितने गुण हैं बताइए, भगवान के व्यक्तित्व के कितने गुण हैं, 64 74 54 कितने हैं पक्का बताइए ना, अभी आप सोच रहे इधर उधर, 64 सही बात है। इसमें से 50 गुण जो है वो अणु मात्रा में हम सब में रहते हैं, भगवान के 50 गुण जो भगवान में प्रचुर मात्रा में अनंत मात्रा में वो हमारे अंदर अणु मात्रा में है, वही 50 गुण ब्रह्मा जी में प्रचुर मात्रा में है अनंत मात्रा में, जब वही 50 गुण परिपूर्ण अवस्था में आते तो उसको ब्रह्मा जी कहते हैं। फिर उसके आगे के 5 गुण जो मतलब 5 मिलते हैं उसमें तो वो शिव जी हो जाते हैं, 55 गुण शिव जी के अंदर है परिपूर्ण मात्रा में है, और उसके आगे के 5 गुण जिस व्यक्ति में होते हैं उसको विष्णु कहते हैं, और ऐसे अनंत विष्णु हैं जिनके अंदर 60 गुण शाश्वत मात्रा में चिरंतन मात्रा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं, लेकिन आगे के 4 गुण जो है ना वो केवल कृष्ण में है, कौन से वो? प्रेम माधुरी, लीला माधुरी और रूप माधुरी और वेणु माधुरी। ये रूप तो सबके पास है, ऐसा नहीं कि सबके पास नहीं है, लेकिन इनके पास जो है वो अलौकिक है, अतुलनीय है, किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते उसकी। तो प्रेम की लीला जो कृष्ण करते हैं, उतना प्रेम तो विष्णु में भी करते हैं। विष्णु की लीला भी प्रेम से होती है। जब विष्णु नरसिंह भगवान बन के आते हैं तो प्रहलाद से भी प्रेम ही करते हैं, लेकिन इनकी प्रेम की क्वालिटी और इनकी प्रेम की गहराई और इनकी प्रेम की विशालता ये किसी के अंदर नहीं है। उसी तरह से लीला जो करते हैं, बाकी लोग भी लीला करते हैं, भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी भी करते हैं और विष्णु जी भी करते हैं, वामन देव भी करते हैं और नरसिंह भगवान भी करते हैं, वरादेव भी करते हैं, लेकिन वो लीलाओं में सब ऐश्वर्य भरा हुआ है और इनकी लीला में माधुर्य भरा हुआ है। जब क्या करते लीला उतरते, गोवर्धन उठाते। अभी किसी भगवान ने कभी सुना आपने नरसिंह भगवान ने माखन का चोरी किया? ऐसा काम तो केवल कृष्ण ही करते। यू कैन नॉट इमेजिन वामन देव स्टीलिंग बटर फ्रॉम अदिति'ज फ्रेंड्स हाउस, ऐसा नहीं हो सकता है। बट इतनी मधुर लीला कृष्ण करते हैं, उनको कोई संकोच भी नहीं है और उसकी इतनी माधुर्य है उसके अंदर कि लोग जब देखते हैं तो ऐसा नहीं कहते अरे कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हो, आप कृष्ण हो, ऐसा कोई कहेगा भी नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है को भगवान है। इससे सब कुछ उनका एक्सेप्टेड हो जाता है। तो इस प्रेम की जो विशेषता है, इस लीला की जो विशेषता है, किसी भी अवतार में नहीं है। और रूप, क्या कहें आपको रूप के बारे में? देखो इनका रूप तो विष्णु का रूप सब जगह पर आकर्षक है। शांताकारम भुजगचनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, शुभांगम सब जगह पर उनके सौंदर्य का बोलबाला है। लेकिन जो सौंदर्य उन्होंने गिरिराज को उठाने के बाद प्रकट किया, उसका प्रूफ क्या है? गिरिराज को धारण करने के बाद में 7 दिन 7 रात किसी ग्वाल बाल ने पानी नहीं मांगा, भोजन नहीं मांगा, निद्रा नहीं मांगी, सोने की जगह नहीं मांगी, कोई ब्रेक नहीं मांगा, कोई लघु शंका कोई दीर्घ शंका का ब्रेक नहीं मांगा। 7 दिन और 7 रात अविरत आकर्षण से वो गोपियां, ग्वाल बाल, यशोदा माई सब लोग एक टक भगवान को देख रहे हैं। कैसे मुमकिन हुआ ये? क्योंकि भगवान ऐसे रूप माधुरी को प्रकट कर रहे थे कि उधर भूख और प्यास का जगह का नाम ही नहीं, उधर कोई चांस ही नहीं है भूख और प्यास का। 7 दिन अपने नेत्रों के चशकों से वो रूप माधुरी का अमृत जो है वो पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे। और अगर संबर तक बादलों में इतना पानी होता कि 700 दिन चलाते तो 700 दिन भी ऐसे ही बैठते भगवान को देखते। ये तो लीला में लिमिट कैसे आया? क्योंकि संबर तक बादल के पास लिमिटेड पानी था, उनके प्राइवेट लिमिटेड वाटर स्टॉक की वजह से लीला 7 दिन में समाप्त हुई। ज़्यादा होती तो 700 दिन भी चलता ना, तभी भी ये देखते रहते। क्या आकर्षण है कृष्ण के रूप में, देखो आप, पलके भी नहीं झुपाए उन्होंने और एक टक भगवान के रूप की माधुरी को प्रशन करते रहे। और उससे भी बढ़कर जो है उससे सूक्ष्म है, क्योंकि रूप भी दिखता है ना अपने को, रूप भी दिखाई पड़ता है, लीला भी होने के समय दृश्य हो जाती है। लेकिन भगवान का जो वेणु है ना, वो सबसे सूक्ष्म माधुर्य है भगवान का। वो हृदय से वो अमृत निकलता है, वेणु के होल में चले जाता है, वहाँ से वेणु को भर के बजाया जाता है, तो वहाँ से निकल के सूक्ष्म रूप में वो गोपियों के हृदय को व्याप्त कर लेता है। और केवल व्याप्त नहीं करता है, पूरे अस्तित्व को भ्रमित कर देता है। सब गोपियाँ ना अच्छी मर्यादा शालीन कुलीन स्त्रियाँ जो हैं वो ऐसा व्यवहार करती है कि लोग भी देखते रह जाते, क्या हमारी बीवी को क्या हो गया है, रात को बीच में भाग रही है, काजल निकालकर पैर को लगा रही है, घुंघरू गले में बांध रही है, हाँ व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। मतलब सबसे शालीन कुलीन मर्यादा वाली स्त्रियां जो है वो ऐसे लगती है कि क्या हो गया इनको, इतनी शक्ति है उस मुरली में। तो वेणु माधुरी वो कृष्ण की 64 गुणों में से एक सर्वश्रेष्ठ माधुरी है। मेरे ख्याल से अभी समय समाप्त हो गया है, व्हाट डू थिंक प्रभु जी, शैल वी कंटिन्यू? नहीं ठीक है, इतना जोरदार आवाज नहीं आई है तुम लोग। ठीक है, मेरे को आज मैं थोड़ी महाराज हूँ, चले कंटिन्यू, हरि ओम। कोई बात नहीं, तो थोड़ा मुझे मोर के बारे में भी बताना था, क्योंकि मोर भी वृंदावन का बहुत अविभाज्य अंग है। तो हाँ तो राधा रानी कृष्ण पर उठ जाती है कई बार, है ना। तो उसके कई कारण हैं। एक बार ललिता जी वहाँ झूल रही थी ललिता कुंड पे, नारद मुनि उकसा के आए थे, उनको बिठा कर आए थे, तुरंत यहाँ पे आके बताया, अरे तुम यहाँ पर अभी तक मेकअप कर रही हो, वहाँ देखो ललिता जी झूल रही तुम्हारी जगह बैठ कर। तो श्रृंगार छोड़ के गई वहाँ पर और देखा तो वास्तव में ललिता जी झूल रही है, सब सखियाँ झूला रही है, ललिता जी को इंटरेस्ट नहीं था झूलने में, इन्होंने इतना उकसाया इतना उकसाया, अरे थोड़े समय की बात है अभी तो आते ही रहोगी, तब तक तो झूल लीला सब लीला शांत खड़ी हुई है तो लीला होने दो, तब तक आप भी श्रृंगार किए हो, वो भी श्रृंगार किए हैं, गोपियाँ राजी है, आप भी नहीं, कृष्ण भी राजी है, चढ़ जाओ झूले पे। तो वो भी फिर भी नाराज़ थी, वो मतलब तैयार नहीं थी, सब गोपियों ने चढ़ाया। अभी उनको लगा कृष्ण की इच्छा है तो ठीक है, उनके आनंद के लिए चल लेते हैं। जैसे ही विराजमान किया उसको ललिता को और झूला शुरू हुआ, नारद मुनि झट से वहाँ पर पहुँचे, नंद क्या कहते हैं उसको, भानु महल पे पहुँच गए। भानु महल पे खबर किया, तुम यहाँ पर श्रृंगार कर रही है, वहाँ पर ललिता जी झूल रही है। तो जब राधा रानी ने देखा कि वास्तव में ललिता जी झूल रही है, सब गीत गाए जा रहे हैं, कृष्ण भी बड़े मज़े ले रहे हैं, बड़ा गुस्सा आया उनको, चली गई पैर, औरतों को गुस्सा तो क्या करते हैं। फिर एक बार रास में राधा रानी लेट हो गई, नहीं सॉरी, राधा रानी सब लोग आ गए थे और कृष्ण लेट हो गए, तो कृष्ण लेट हो गए तो राधा रानी लूट कर चली गई। ऐसे कई एक कारण हैं। तो एक बार क्या हुआ कि राधा रानी और कृष्ण ने एक सुंदर लीला है उनकी, उसका नाम है परस्पर श्रृंगार लीला, ब्रज की लीलाओं में सुंदर लीला है। जब वो केवल दो ही रहते हैं, सारी व्यवस्था वृंदा देवी करती है लेकिन छोड़ती दोनों को ही है, फिर दोनों एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। तो ये लीला गहवर वन में हुई थी, जब दोनों ने मिलकर एक दूसरे का अपने अपने भाव से श्रृंगार किया। भगवान ने राधा रानी का बहुत बार श्रृंगार किया है, लेकिन एक श्रृंगार होता है भगवान करते हैं जैसे कुसुम सरोवर पे, और एक होता है परस्पर श्रृंगार लीला, ये उनका करते हैं ये उनका करते हैं दोनों। तो श्रृंगार पूरा हुआ, तब तक संध्या हो गई थी, तो राधा रानी ने कहा कृष्ण से, चलो मेरे श्रृंगार का वर्णन करो आप। कभी वर्णन करने का हम कैसे वर्णन करते हैं कि आप मतलब आपके गाल गुलाब की तरह गुलाबी हैं, ऐसे कुछ भी समथिंग इज देयर ना, तो अपने उसमें तुलना करते हैं हम लोग कि आप कृष्ण के होस्ट जो है वो बिंब फल की तरह है, क्योंकि बिंब फल लाल होता है, तो हमको आइडिया था कि कितना लाल कृष्ण के होंठ होंगे। तो हर एक जो श्रृंगार का वर्णन होता है ना, वो किसी वस्तु के साथ तुलना करके हम करते हैं। आपको ये बात समझ में आई ना पूरा से तैसे? किसी भी सौंदर्य का वर्णन किसी और वस्तु के तुलना के साथ होता है, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होती है, जिसका वर्णन करने से हमको इनके उस सौंदर्य का अंदाज आ सकता है कि भाई हाउ मच रेड इट मस्ट बी। तो वैसे कृष्ण भी ढूंढ रहे हैं प्रकृति में किसके साथ तुलना करूं, एक भी सृष्टि की वस्तु जो है प्रकृति की, इनकी किसी भी वस्तु के साथ मिलने रही है, तो हाउ डू आई कंपेयर। और वो कह रही है अरे अभी तक चुप क्यों हूँ, बोलो तो सही। और वो सोच रहे हैं कि करूँ तो मैं बढ़िया से करूँ ना, तो कोई वस्तु ढूंढो ऐसे, तो उनको मिली नहीं वस्तु, तो पूरी प्रकृति को ढूंढ लिया, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आग्नेय नैऋत्य ईशान्य वायव्य सब देखो गया, नीचे के आठ हो गए, फिर ऊपर देखा, दो दिशा और भी है ना, नीचे और ऊपर, ऊर्ध्व और अधर है ना। ऊपर देखा तो आकाश में चंद्रमा का उदय हो रहा था, तो कृष्ण को लगा कितना सुंदर लग रहा है चंद्रमा, तो उन्होंने कहा कि आपका चेहरा चंद्रमा की तरह है। अभी समझो यहाँ पर बहुत सारी माताएं बैठी हैं, उनके पति भी यहाँ बैठे होंगे, अगर वो बोलते हैं कि आपका चेहरा चंद्रमा की तरह है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या करूँ आपके लिए, क्या चाहिए आपको, बासुंदी चाहिए, लड्डू चाहिए, बोला जो चाहिए बोलो, आज आपका मैं आप पर इतनी फिदा हूँ कि आपने मुझे पहली बार समझा कि मेरा सौंदर्य क्या है, आज आपने मुझे पहचाना है कि मैं क्या हूँ, इस तरह का आनंद का अपेक्षा है ना कि ऐसा बोलने के बाद। तो कृष्ण को भी लगा कि मैंने चंद्रमा के साथ में तुलना किया, मतलब कितना कितना बढ़िया काम किया मैंने, लेकिन होना था कुछ उल्टा ही, आनंद होने के बदले में वो रूट गई। तो कृष्ण ने कहा कि अरे क्यों रूट गई हो, बोले ठीक है आपने अपराध किया है तो आपको अपराध का मतलब क्या होता है ये समझाना भी मेरा कर्तव्य है, सो यू शुड नो दैट यू शुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। बोलते जिस चंद्रमा की आप तुलना कर रहे हो देखो जरा कितने दाग है उसके ऊपर, हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है, और आप हमारी तुलना उनसे करते हो, कितने दाग है देखो, यहाँ इतने दूर बैठा हुआ है फिर भी इतने दाग दिखाई पड़ते हैं, दिखा ना हमें शरद पूर्णिमा के दिन, बहुत सुंदर है लेकिन दाग कितने हैं उसके अंदर, एक कारण है। दूसरा कहते हैं हमारा सौंदर्य जो है वो सदैव बढ़ते रहता है और ये चंद्रमा घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है, कभी क्या कहते हैं उसको शुक्ल पक्ष तो कभी कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में तो समाप्त हो जाता है, दिखता भी नहीं एंड में अमावस्या के दिन, हमारा सौंदर्य ऐसा नहीं, हमारा सौंदर्य सदैव बढ़ने वाला सौंदर्य है, ठीक है। तीसरा कारण, ये चंद्रमा को ग्रहण लगता है और राहु केतु खा लेते हैं उसको, हमारे सौंदर्य को कभी ग्रहण लगता नहीं, हमारा सौंदर्य ग्रहण ही नहीं, कभी भी ग्रहण लगता नहीं हमारे सौंदर्य में, कोई चांस ही नहीं है। और ये चंद्रमा जो है ना वो परप्रकाशित है, सूर्य के प्रकाश को लेकर परावर्तित करके फिर खुद चमकता है, हमारा सौंदर्य जो है वो स्वयं प्रकाशित है, हमारा सौंदर्य किसी पर निर्भर नहीं है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, हमेशा बढ़ने वाला है कभी घटने वाला नहीं है। बोलते ये भी कारण मैं ना इग्नोर कर सकती हूँ, वैसे तुम अज्ञानी हो ग्वाल बाल हो नंदगांव के तो मैं समझ सकती हूँ कि ये भी मैं आई विल नॉट टेक इट सीरियसली, लेकिन एक जो कारण है चंद्रमा को तुलना करने का पीछे वो मैं कभी भी और कदापि सहन नहीं कर सकती। तो कृष्ण डर गए, भाई चार तो बताया बहुत गंभीर, मेरे ध्यान में भी नहीं आया था वो चार, और बोल रहे पांचवा एक भयंकर है, वैसे आठ है मुझे अभी तक दो याद नहीं है लेकिन आठ है उसके कारण, तो आठवा कारण बता रही है, तो कह रही है चंद्र चंद्रमा, इसके बीच में जो चंद्र नाम है ना वो मेरे राइवल चंद्रावली का आधा नाम है। तो चंद्र के चंद्रमा की तरह आपका चेहरा है, ये कहते हुए आप चंद्रावली की याद दिला रहे मुझे, रो में कभी भी सहन नहीं कर सकती, और शकर के पैर जमीन पे जोरदार मार के वो चली जाती है, पहाड़ के नीचे बैठ जाती है जाके। अभी कृष्ण को लगा अरे क्या किया मैंने, क्या सोच के किया था, सोचा था क्या और क्या हो गया, मैंने कहा था सोचा था कि खुशी दे दूंगा मैं उनको, आनंद दे दूंगा, लेकिन तो अजीब काम हो गया। तो फिर क्या हुआ, अभी तो गड़बड़ हो गया ना, अभी एवरीथिंग इज फिनिश्ड, श्रृंगार भी बेकार हो गया, रूट गई वो, मेरा श्रृंगार भी बेकार है, मैं भी सत्सत के बैठा हूँ, कुछ नहीं लीला नहीं कुछ नहीं, ग्यावर मन में बैठे हुए थे अकेले में एकांत में, निवृत्त निकुंज लीला करने का मौका था, सब फेल हो गया, उतने में सब पता चला सखियों को कि गड़बड़ हो गया, लीला आगे नहीं बढ़ी, देखा तो क्या है रो रही है बैठ के। ललिता को बुलाया जाओ क्या देख रही हो, जाओ मना उसको। तो ललिता गई सखियों को लेकर, कुछ बहुत सारा मनाया, कुछ कुछ किया, नहीं, ललिता को देखते ही समझ में है ना कि कृष्ण की ओर से मनाने के लिए आ रही है, पहाड़ के ऊपर चढ़ गई, और मतलब इधर से आए तो और चढ़ गई ऊपर, तो वापस चले गए निराश होकर के, नहीं मान रही, अरे क्या नहीं मान रही आप, जाओ मनाओ उसको। दोबारा गए सखियाँ तो और ऊपर चढ़ गई, तीसरी बार गई, चौथी बार गई, पांचवी बार, ललिता बोल रही बाद में अरे मुझको तुमने चौगान की गेंद ही बना दिया है, मतलब फुटबॉल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चौगान की गेंद, उधर भी ब्रज में भी चौगान की गेंद खेलते थे, लात यहाँ मारेंगे तो वहाँ से भी लात मारेंगे, ऐसे गेंद गेंद को कोई अपना इंडिपेंडेंस नहीं होता है, जहाँ लात मारेंगे वहाँ चले जाते हैं, तुमने मुझे चौगान की गेंद बना दिया है, तुम यहाँ से ढकेलते हो वो वहाँ से ढकेलती है, नतीजा कुछ नहीं, बीच में थक गई, आवत जावत हार गई री, स्वामी हरिदास जी लीला लिखते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो आखिर में चढ़ के चढ़ के चढ़ के चढ़ के पर्वत की चोटी पर पहुँच जाती और अभी तक मान नहीं रही है। फिर ललिता जी बोलते हैं अभी एक लास्ट उपाय करते हैं, तुम अभी खुद हमारे साथ चलो। तो ललिता जी कृष्ण को श्याम सुंदर को ऊपर ले जाती है, वहाँ पर उनको एक जगह बिठा के रखा है और सब लोग हवा दे रहे हैं, कुछ सुगंधित द्रव्य दे रहे हैं, कुछ कुछ खिलाने पिलाने को दे रहे हैं, वो कुछ देखती नहीं किसी तरफ। तो कृष्ण को लेके आते हैं तो वो देख रही है यहाँ से ऐसे, कृष्ण यहाँ से आ रहे तो उधर देखती, फिर वो कृष्ण को वहाँ से लेके आते उधर देखती, कोई चांस ही नहीं, नो स्कोप। तो फिर कृष्ण जाकर उनके चरणों में वंदन करते हैं, आप समझ सकते हैं गोलोकेश्वर परात्पर भगवान सब कुछ फूल कर राधा रानी के चरणों में वंदन कर रहे हैं, फिर भी वो देख भी नहीं रही है, फिर पैरों को ऐसे हाथ लेकर अश्रु बहा रहे हैं फिर भी वो देख नहीं रही है, फिर मोर मुकुट उतार के अपने उनके चरणों में रख रहे हैं, ब्रज का जो भी उनका अहम था ना वो भी चरणों में रख दिया, पहले कुछ है नहीं अहम उनका, सब छोड़ के ब्रज में आए, लेकिन ब्रज में भी उनका एक मोर मुकुट का अपना एक स्थान है, वो भी उठाकर चरणों में रख दिया, फिर भी नहीं देख रही है। फिर भगवान ने श्याम सुंदर जी ने अपने आंखों से नदियां बहाई आंखों से अश्रुओं की और उनके पैरों का सिंचन किया, फिर भी राधा रानी नहीं देख रही है। फिर उन्होंने वो अश्रुओं से गिरे हुए रज पर जो चिकना हो गया ना, पूरा गीला हो गया पूरा, उसमें लोटपोट हो गया भगवान, रोलिंग इन द डस्ट अंडर द फीट ऑफ राधा रानी। फिर भी राधा रानी नहीं मान रही है। अभी सब गोपियां हार गई, इतनी रूठी। अचानक ललिता के मन में कुछ आइडिया आया और उसने कहा, कृष्ण के कान में आके कुछ कहा, तो आगे अचानक कृष्ण का चेहरा खिल गया, गोपियों का चेहरा भी खिल गया। राधा रानी के पास कुछ गोपियां बैठी हुई, नाराज है और रो रही है, सब कुछ ठीक है। कृष्ण अचानक चले गए, गोपियां भी चली गई, थोड़ी देर सखियां वहाँ बैठी हुई है। और कुछ देर बाद में एक मोर जो है वो सामने वाले टील पर आता है, नृत्य करने आरंभ करता है और बहुत सुंदर नृत्य करता है। अकेला मोर है, बहुत अद्भुत मोर है। तो सब सखियाँ कह रही है, अरे देखो सखी राधा रानी, देखो कितना अच्छा मोर आया नृत्य कर रहे हैं। तो मुझे नहीं देखना है। अरे तुमको तो क्रोध तो कृष्ण पर है ना, मोर का क्या दोष है, मोर नृत्य कर रहा है, मोर को देखने में क्या इतराज है तुम्हें। हाँ बोला ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो थोड़ा टर्न हो जाती है, ऐसे बैठे थे और फिर मोर को देखने लगती है। जैसे ही मोर को देखती है, मोर उसको देखता है, मोर का उत्साह बढ़ता है, मोर और सुंदर नृत्य करने लगता है। जैसे ही मोर बहुत प्रेम से नृत्य करता है तो आकाश से हल्के लिए बौछार हो जाती है और कुछ और मोर जुड़ जाते हैं और वो भी नृत्य करते हैं। वो मोरों को नृत्य करते हुए देखकर सखियों को प्रेरणा होती है, वो अपनी मोरनियों को भेजती है और मोर मोरनियाँ नृत्य करने लगते हैं। तो राधा रानी अभी ऐसे देख रही है और मैं तुमसे देखने लगी, उत्साह बढ़ा उनका। हाँ, नेगेटिविटी जा रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। बहुत सुंदर उन्होंने दर्शन कराया तो सारे मोर मोरनियों को भी उत्साह आया। अरे रूठी हुई राधा रानी बहुत खुश हो रही है, चलो हम लोग और उनको खुश कर देते। सारे मोर और मोरनियाँ नाचने लगे, वो मोर भी जो पहले आया था वो भी नाच रहा है प्रेम से। उतने में राधा रानी को इतना उत्साह आता है कि वो सारा मान भूल जाती है, कम्प्लीटली भूल जाती है और खुद जाकर उस नृत्य में मोरनी के जैसे नृत्य करने लगती है। मोरनी बनी नहीं है लेकिन मोरनी का तरह उस मोर के साथ जो मेन मोर था उसके साथ नृत्य करती है और बहुत देर तक ये नृत्य चलता है। और वातावरण इतना मधुर हो गया है कि उसमें आकाश से वारी बिंदु गिर रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है और कंगन के पायल की आवाज़ आ रही है, मोर मोरनी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बोलते ना अपनी मेरी मोरनी है, मेरी मोरनी, तो मैं उनको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, नाचो और नाचो अच्छे तरह को। राधा रानी बड़ी खुश हो रही है, श्रीजी महारानी प्रसन्न हो रही है और वो जो नृत्य है वो एकदम लास्ट स्टेज पे आता है। वो लास्ट स्टेज में कैसा होता है ना, आपको हाउ यू एंड द डांस, ऐसा कुछ करते हैं और वो पोज में डांस एंड होता है ना। तो ये ना ऐसा बादाम बनाते हैं, कैसे बादाम, इनका हाथ ऐसे और उनका हाथ ऐसे, दोनों मिलते हैं तो ऐसे एक स्थिति उत्पन्न होती है और इस तरफ मोर पंख हैं। तो जब वो पोजीशन आती है और डांस समाप्त होता है और राधा रानी उस मोर के निकट आ जाती है, निकटतम अवस्था में आ जाती है, तब पता चलता है कि वो मोर और कोई नहीं है, वो कृष्ण है। तो कृष्ण उनको मोर बनकर रिझाते हैं और उनका मान भंग कर देते हैं। तो ये जगह है मोर कुटी, जो मान मंदिर के बिल्कुल सामने है, जहाँ पर मोर लीला हुई थी और वहाँ पर नित्य मोर लीला होती है। मोर वृंदावन लीला का अविभाज्य अंग है, मोर पंख और मोर लीला। भगवान सदैव मोर पंख धारण करते हैं क्योंकि एक बार कृष्ण ने ऐसा सुंदर नृत्य किया था और मोर भी बहुत सुंदर नाचे थे तो मोर के राजा ने आकर अपना पंख कृष्ण को भेंट दिया था, तब से कृष्ण उसको पहन रहे। एक बार एक मोर नंदगांव गया था और पुकार पुकार कर थक गया तो कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया, नाराज हो गया, उतरा नंदगांव वासियों ने बोला बरसाने जाओ, राधा रानी को पुकारो वो नुकसान बताएगी। तो ये नंदगांव से बरसाने गया, राधा रानी को पुकारा, वो नीचे भाग के आई एक ही बार पुकारने के बाद और कहा तुम क्यों नाराज हो, क्योंकि नंदगांव गया बहुत बार पुकारा, कृष्ण ने जवाब ही नहीं दिया। बोले दोबारा नंदगांव जाओ, इस बार कृष्ण को मत पुकारो, उसका राधे राधे पुकारो। राधे राधे पुकारा तो रा और धे पूरा होने के पहले ही कृष्ण भगवान भाग के आए। कौन मेरी राधा रानी को पुकार रहा है, जिनको हजारों बार पुकारा तो भाग के नहीं आए लेकिन राधा रानी का नाम पुकारते भाग के आए। तो मोर भी गदगद हो गया, कृष्ण भी गदगद हो गए, मोर को कृष्ण ने गोद में लिया, बहुत प्रेम से दुलारा। तो क्या कहते हैं उसको, एक्स्टैटिक सिम्टम्स, सहारे आले सहारे, रोमांच खड़े हो गए और कुछ पत्ते झड़ गए। तो प्रेम के भाव में झड़े हुए पत्तों में से एक पत्ता उठाया कृष्ण ने और अपने शीश पे लगाया, तब से बनाया मोर मुकुट। तो मोर कुटी में भगवान के मोर की अनंत लीलाएं चलती है। ये तो मान लीला के अंदर मोर लीला हुई, बाकी समय पर एक लीला ऐसी है यहाँ से राधा रानी गोपियों को लेकर आती है, यहाँ से कृष्ण अपने फ्रेंड्स को लेकर आते हैं और अचानक मुरली निकाल के बजाने लगते हैं, उधर से बारिश होने लगती है, कुछ मोर आते हैं गोपियों की तरफ से, कुछ मोरनी आती है गोपियों की तरफ से, प्रोत्साहन देके उनको डांस कराते हैं, फिर कृष्ण मुरली बजाते हैं, सब लोग मोर डांस करते हैं। कभी मोर कृष्ण मोर बनकर और राधा रानी मोरनी बनकर प्लान करके डांस करते हैं, बाकी सारी सखियां भी मोर मोरनिया बनकर डांस करते हैं। कभी कृष्ण और राधा रानी एक्चुअल मोर मोरनी बनती हैं, रियल मोर मोरनी बनते हैं, उसका रूप धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। और एक बार सुंदर वर्णन ऐसा है कि कृष्ण और राधा रानी मोरकुटी पे खड़े हैं और वो कैसा है ना, वायु है ना वायु, ये सभी देवताएं कृष्ण की लीला में ना कहीं से स्नीक करके प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऑफिशियल प्रवेश तो है नहीं, उनको चाहिए प्रवेश, तो कुछ कुछ सेवाएं ढूंढ लेते हैं और वो अपना अपना काम, चंद्रमा कैसे आकाश में जाके सुंदर अपना दर्शन देते हैं, बादल कैसे इंद्र देवता उनको हर वारी बिंदु देते हैं, ऐसे अपना अपना जो भी है वो अधिकार में सुख देने का प्रयास करते हैं, वातावरण निर्मिति का प्रयास करते हैं। तो ये वायु की सेवा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। जो वृंदावन के जलाशय में, नदी में, प्रवाह में, झरने में जो भी सुगंधित फूल खिले हैं, जैसे कमल, तो जब कमल खिलते हैं ना तो उनके पू केसर भी हवा में रहते हैं, जो सुगंध जो है पू केसर के माध्यम से सब जगह फैलता है। और जलाशय यमुना नदी, आज भी अगर आप जाएंगे समुद्र में जाएंगे, नदी में जाएंगे, तो समुद्र के नदी के तल से, पृष्ठभाग से 4 से 8 फीट तक की जो हवा होती है ना, वो सबसे अधिक शुद्ध होती है, रिच इन ऑक्सीजन। इससे जब भी हम समुद्र के किनारे जाते हैं घूमने के लिए, तो फ्रेश होकर घर पर लौट के आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो वो होता है बाष्प उनके ऊपर, अब उस बाष्प में सुगंध मिक्स हो गया है, सुगंध वहाँ पर फैला हुआ है, क्योंकि पू केसर वहाँ बिखरे हुए हैं और हवा उसमें से बह के आती है, तो वो जो नमी है, नमी वो बाष्प और वो सुगंध लेकर वो मंद 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 बहते हुए राधा और कृष्ण के पास में आती है, और वो सुगंधित शीतल और मंद वायु राधा और कृष्ण के दिव्य शरीर को स्पर्श करता है, और उससे राधा कृष्ण के शरीरों को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और हमारे जो वो है ना प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, वो अपने राधा सुधा निधि ग्रंथ के पहले श्लोक में लिखते हैं कि जब ये क्या हवा का गुण बताया मैंने, तीन क्या गुण बताया बताइए, क्या क्या गुण बताया हवा का मैंने, एक तो मंद, दूसरा क्या है शीतल, और तीसरा क्या है सुगंधित। तो मंद, शीतल, सुगंधित, हवा जब आती है और राधा रानी के आंचल को स्पर्श करती है तो वहां से वो परावर्तित होती है, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देयर, और जब वो परावर्तित होती है तो वो एक दिशा से आती है, तो कहते हैं कृष्ण उस दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा से वो परावर्तित होकर आ रही है। समझ में आया ना, ऐसा उस हवा का भाग्य है और ऐसा कृष्ण राधा रानी को मानते हैं कि राधा रानी के पल्लू को छूकर आ रहे, वो राधा रानी को छूकर भी नहीं आ रहे। तो ऐसे हवा आती है तो कहते हैं कि कृष्ण का दुपट्टा ऐसा हवा में उड़ रहा है, राधा रानी का हवा ऐसा हवा में उड़ रहे हैं, दोनों ऐसे हवा में उड़ रहे हैं। तो ये हवा में उड़ते हुए अपने अपने दुपट्टों को देखकर उन दोनों को प्रेरणा होती है और राधा रानी कंगन बजाने लगती है, गोपियां पायल बजाने लगती है, कृष्ण मुरली निकालकर मुरली बजाते हैं, और उसके बाद में अचानक मोरों का एक सुंदर नृत्य संगीत शुरू हो जाता है, और ये नित्य लीला वहाँ पर हर रोज होती रहती है मोरकुटी में। मोरकुटी पर मोरों की नित्य लीला चलती रहती है, अनंत प्रकार से, अनंत विविधता से लीला संपन्न होती है। तो ऐसा ये मोर पंख और ये मोर और मोरनिया, ये ब्रज की विशेष शोभा है और भगवान को बहुत सूक्ष्म और दिव्य और गहरा आनंद देने में बड़े समर्थ हैं। तो इन मोरों को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये मोर की लीलाएं ब्रज के बाहर नहीं हुई है, ये मुरली वाली लीला, मोर पंख वाली लीला, गाय की लीला, ये सब ब्रज में ही है केवल। बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिनते काहू काम, हमारो मुरली वारो श्याम। ब्रजवासी भक्त जो हैं वो कहते हैं कि हमें उस कृष्ण से क्या मतलब है, जो द्वारका में घूमते हैं, जो हस्तिनापुर में घूमते हैं, जो मथुरा में घूमते हैं, हम तो केवल मुरली वाले मोर पंखधारी गऊ को चराने वाले गायक मुरली श्याम सुंदर को ही जानते हैं, हमको बाकी किसी कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। वी ओनली नो वन कृष्णा, उस मुरली वाला, उस गाय वाला, उस मोर पंख वाला, बस दैट्स ऑल। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो राधा रानी की, बोलो श्री वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे श्याम। तो आप लोगों को विनती है, ये सब लीलाओं को श्रवण करना मनोरंजन का काम नहीं है केवल, इट्स नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, वी आर नॉट हेयर टू एंटरटेन यू। हाँ, आवर पर्पज इज टू गेट यू सक्ट इन टू द डेप्थ ऑफ द लीला ऑफ कृष्णा। कृष्ण की लीलाओं में आप गहराई में प्रवेश करें, आदर के साथ, एंजॉयमेंट के मूड से नहीं। वी आर नॉट हेयर टू एन्जॉय द लीला, एन्जॉयमेंट ओनली इज अबाउट कृष्णा, ऑफ कृष्णा। कृष्ण के लिए और राधा रानी के लिए खाली एन्जॉयमेंट है इसमें, हमारा खाली एक ही काम है, प्रयास। हाँ, आवर एफर्ट इज ओनली टू असिस्ट इन देयर प्लेजर एंड प्लेजरेबल पास टाइम्स। किसी गोपी का कोई उद्देश्य नहीं होता है कि मुझे भी कुछ आनंद मिलेगा इसलिए मैं भी जाऊँगी। कोई भी गोपी, कोई भी हजारों करोड़ों गोपियों में से एक भी गोपी ये सोचती नहीं कि लेट मी ऑल्सो एन्जॉय। उन लोगों का उद्देश्य एक ही रहता है, लेट राधा एंड श्याम सुंदर एंजॉय। तो हम भी अगर उनकी लीलाओं सुन रहे हैं तो बीच में मनोरंजन तो अपने आप होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन मनोरंजन के लिए हम कृष्ण की लीलाएं नहीं सुनते और नहीं सुनना चाहिए। आचार्य बताते हैं कि कृष्ण की लीला सुनने के लिए हमारे मन में आदर पूर्णता, ऑ एंड रेवरेंस होना चाहिए, बहुत ही गहरा आदर होना चाहिए। और वो आदर की भावना के साथ ये समझ करके हम इस सुनने के योग्य नहीं है फिर भी सुनने को मिल रहा है, नम्रता से सुनना चाहिए उसको। ये समझ के नहीं सुनना चाहिए कि मैं अधिकारी हूँ कहने का और मैं सुनने का, दोनों अधिकारी हूँ, इसमें दोनों से हमको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हमको सुनने को और कहने को मिल रहा है। ये ऋणी भाव से, कृतज्ञ भाव से और सेवक भाव से, आदर भाव से इन लीलाओं को सुनना चाहिए, तभी इन लीलाओं का गलत परिणाम हमारे पर नहीं होगा। अगर हमारा हृदय में गलत भावना है और हम ये लीला सुनेंगे तो हमारी काम वासना प्रज्वलित हो जाएगी, भड़क जाएगी पूरी। चाह तो था कि इसको शमन करें लेकिन हो गया प्रज्वलन, ऐसी अवस्था हो गई क्योंकि सही भाव से हमने उनको नहीं सुना। मनोरंजन के लिए पैसे देकर बोलने वाले को बुलाया और बड़ा स्टेज लगाया, बहुत बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था की और मनोरंजन के लिए कथा सुनाओ महाराज जी, कुछ गीत भी सुनाओ बीच में, ऐसे इससे क्या होता है, ऐसी कथाओं से कभी भी हृदय की शुद्धि नहीं होती है। और हम लोग कथा का श्रवण करते हैं एक ही भाव से कि हमें हृदय की शुद्धि चाहिए, वी वॉन्ट स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, वी डोंट वॉन्ट एंटरटेनमेंट, वी डोंट फील वी आर क्वालिफाइड। हम केवल सेवा के भाव से हृदय की शुद्धि के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, उनके आनंद के लिए सुनना चाहते हैं। बोलो सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।